स्काईपोर्ट से निकलते समय गाड़ी में बैठे हुए जियाशी सोच रहा था कि रॉकी से मिलने पर उसे कैसे शर्मिंदा किया जाए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह राहत महसूस कर सकता था। उसी समय जियाशी ने भी एलिन के बारे में सोचा और उसके बारे में सोचने मात्र से उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि वह एलिन से केवल कुछ ही बार मिला था और वे अवसर कई महीने पहले के थे, फिर भी एलिन के बारे में सोचने मात्र से ही जियाशी का दिल जलने लगता था। ये बिल्कुल सामान्य बात थी क्योंकि एलिन थंडरहॉक सिटी की वित्त अधिकारी होने के बावजूद सिर्फ 17-18 साल की थी, एक ऐसी जवानी जो संभावनाओं से भरपूर थी और इसके अलावा वह एक कुलीन परिवार से थी और जिंदा दिल थी। ऐसी लड़की भला कैसे पसंद नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार एलिन के बारे में सोचकर जियाशी को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सीधे रॉकी को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और यह पता लगाने लगा कि इस बार एलिन को कैसे जीता जाए। दरअसल पिछली बार उसने एलिन को पाने की कोशिश की थी, लेकिन रॉकी ने उसे मौका नहीं दिया था। जियाशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रॉकी शहर का स्वामी होने के नाते यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या चाहता है, बल्कि उसने सोचा कि रॉकी जानबूझकर अनभिज्ञता का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसका एलिन के साथ प्रेम प्रसंग था और वह उससे अलग नहीं हो सकता था। जियाशी की नज़र में उच्च समाज में ऐसी बातें बहुत आम थीं। इस वजह से उसने एलिन को पाने की और भी ठान ली, क्योंकि उसकी नज़र में एलिन नगर स्वामी की स्त्री थी। उसने सोचा अगर वह उसे पा सके तो न सिर्फ उसे आनंद आएगा बल्कि उसे अंदर से बहुत संतुष्टि भी मिलेगी। आपको ये समझना होगा कि हालांकि जियाशी एज्योर कॉमर्स गिल्ड की प्रमुख थी, लेकिन इतने बड़े गिल्ड में कई दर्जन प्रमुख होते थे। इसके अलावा प्रमुख होना चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, नगर स्वामी होने के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए नगर स्वामी की स्त्री होना जियाशी के लिए निश्चित रूप से एक गर्व करने योग्य उपलब्धि होगी। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? गाड़ी में बैठे बैठे काफी देर तक कल्पना करते हुए जियाशी को प्यास लगने लगी, लेकिन उसने महसूस किया कि वे अभी भी सिटी लॉर्ड के भवन तक नहीं पहुंचे थे। यह इतना धीमा क्यों था? कुछ महीने पहले एक बार थंडरहॉक सिटी जाने के कारण जियाशी को पता था कि स्काईपोर्ट से सिटी लॉर्ड्स मेंशन की दूरी विशेष रूप से अधिक नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि वह लंबे समय से गाड़ी में बैठा था। ये सोचते हुए जियाशी ने अनजाने में गाड़ी की खिड़की से बाहर झांका कि वे कहाँ हैं, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। उसे थंडरहॉक शहर के इस इलाके में कैसे लाया गया था? गाड़ी अब थंडरहॉक शहर के सड़कों पर यात्रा कर रही थी और उसका ध्यान सिटी लॉर्ड के भवन की ओर जाने से पूरी तरह हट गया था। अरे क्या हो रहा है, तुम गाड़ी शहर में क्यों लाए? यह महसूस करते हुए कि उसे जिले में लाया गया है, जियाशी को अब अपनी स्थिति की परवाह नहीं रही और उसने जल्दी से अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और गाड़ी चालक पर चिल्लाया। सर, स्काईपोर्ट से सिटी लॉर्ड्स मैंशन तक सड़क की मरम्मत चल रही है, इसलिए हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट से होकर जाना होगा। चिंता न करें सर, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, ड्राइवर ने चाबुक लहराते हुए कहा, फिर थोड़ी गति बढ़ा दी। धत्तेरी की, ये सुनकर जियाशी ज्यादा कुछ नहीं कह सका और केवल गाड़ी के अंदर बैठ गया और मन ही मन थंडरहॉक सिटी और रॉकी को अनगिनत बार कोसता रहा। एक घंटे से भी अधिक समय बाद गाड़ी अंततः सिटी लॉर्ड के भवन में पहुंची और जब जियाशी गाड़ी से नीचे उतरा तो उसके पैर सुन्न हो गए थे। हालांकि आखिरकार सिटी लॉर्ड के महल में पहुंचने पर भी उसे रॉकी या एलिन नहीं दिखे। एक नौकरानी उसे सिटी लॉर्ड के हॉल तक ले गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तुम्हारा नगर प्रभु कहाँ है? श्रीमान, नगरपाल एक जरूरी काम निपटा रहे हैं, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जियाशी को हॉल में लाने वाली नौकरानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़कर जाने से पहले कहा। जल्द ही कोई चाय और नाश्ता लेकर आया और जियाशी के पास सिटी लॉर्ड्स हॉल में रॉकी के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह इंतजार एक घंटे और चला। एक लंबे और थकाऊ घंटे के बाद पिछली नौकरानी फिर से प्रकट हुई और फिर जियाशी से कहा कि रॉकी का मामला अभी तक सुलझा नहीं है और वह उससे कल ही मिल सकता है। अब तक जियाशी पूरी तरह से टूट चुका था, गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन उसके पास गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। वो एक मामूली नौकरानी पर तो भड़क नहीं सकता था, है ना? इसलिए अंत में उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह पेट में भरी हुई हताशा के साथ सिटी लॉर्ड के भवन को छोड़ दे और एक बार फिर एक गाड़ी लेकर थंडरहॉक सिटी के जिले के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ अंततः स्काईपोर्ट में व्यापारी जहाज पर वापस लौट आया। वह सुबह थंडरहॉक शहर में पहुंच गया था, लेकिन जब तक वह अपने व्यापारी जहाज पर लौटा तब तक अंधेरा हो चुका था। दिन के अधिकांश समय में जियाशी थंडरहॉक सिटी के जिले में दो बार घूम चुकी थी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रॉकी या एलिन की एक झलक भी नहीं मिली। व्यापारी जहाज पर लौटते ही जियाशी बेहद गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने तय कर लिया कि वह कल रॉकी से मिलने नहीं जाएगा, रॉकी को उससे मिलने आना ही होगा। लेकिन अगले दिन रॉकी उससे मिलने ही नहीं आया। न सिर्फ नगर स्वामी रॉकी आया बल्कि वित्त अधिकारी एलिन भी नहीं आई। जियाशी जो पूरे दिन व्यापारी जहाज पर बेचैनी से इंतजार करती रही थी आखिरकार बेकार ही इंतजार करने लगी। जियाशी पूरे दिन बेसब्री से इंतजार करने के बाद बेहद गुस्से में था और उसने कसम खाई कि जब तक रॉकी खुद माफी मांगने नहीं आता वह रॉकी से मिलने बिल्कुल नहीं जाएगा। वह देखना चाहता था कि कौन और इंतजार कर सकता है, रॉकी जिसे शहर की पूरी आबादी का पेट पालना था या खुद। तथापि ये प्रतिज्ञा करने के 3 दिन बाद ही जियाशी को अपना व्यापारी जहाज छोड़कर पुनः नगर स्वामी के भवन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन 3 दिनों में रॉकी ने उससे मिलने का जरा भी इरादा नहीं दिखाया और न ही कोई संदेश आया। जियाशी पूरे 3 दिन उसके व्यापारी जहाज पर व्यर्थ ही इंतजार करता रहा और उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए उसके पास रॉकी को ढूंढने की पहल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वह थंडरहॉक सिटी में कोई दुश्मनी पालने नहीं बल्कि व्यापार करने आया था। इसलिए अनिच्छा से ही सही उसे रॉकी से मिलना ही था, वरना व्यापार का सौदा टूट जाता। इसलिए हालांकि उसने अपने मन में अनगिनत बार रॉकी को कोसा था, फिर भी उसने 3 दिन पहले की तरह ही एक गाड़ी ली, जिले का व्यापक चक्कर लगाया और फिर सिटी लॉर्ड के भवन की ओर चल पड़ा। इस बीच रॉकी अपने अध्ययन कक्ष में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था और लिलिया के साथ बातचीत कर रहा था। वह काफी सहज दिख रहा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वह बहुत व्यस्त था। खरीदे गए उपकरणों को जल्दी से रून उपकरणों में बदलने के लिए वह हर दिन हाथ से सैकड़ों रून बना रहा था। ये काफी मेहनत का काम था, इतना कि लिलिया को भी उस पर दया आ गई और उसने उसे हर दिन 2 घंटे आराम करने के लिए मजबूर कर दिया, वरना वह उसे अध्ययन कक्ष में नहीं आने देती। गार्ड कोर मोटे के प्रशिक्षण के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है, रॉकी ने काली चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। मोटे का प्रशिक्षण बहुत कठिन है, इसलिए उनके लिए इसमें ढलना काफी मुश्किल है। हालांकि ये सुनकर कि जो लोग इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें जादुई ऊर्जा उपकरण मिल सकते हैं, सभी को बहुत प्रेरणा मिली है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लिलिया ने उत्तर दिया। यह अच्छी बात है, लेकिन मोटे को ज्यादा सख्त मत होने देना। अगर पहरेदारों में उसके प्रति नाराजगी पैदा हो गई तो बाद में उसे उनसे निपटने में दिक्कत होगी। मुझे पता है, लिलिया ने सिर हिलाते हुए कहा। आप कुछ दिनों में गार्ड कोर का दौरा क्यों नहीं करते? नगर स्वामी होने के नाते अगर आप स्वयं गार्ड कोर का हालचाल पूछें तो इसे उनका मनोबल काफी बढ़ेगा। ठीक है, रॉकी ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि लिलिया बहुत अच्छी बात कह रही है, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। वैसे लिलिया को उस समय कुछ याद आया और उसने सहजता से कहा, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी जियाशी को बाहर देखा है। ओह, वह आ जाया था? हाँ, ऐसा लगता है कि वह सिटी लॉर्ड्स हॉल में इंतजार कर रहा था। तो फिर उसे इंतजार करने दो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, रॉकी ने अपनी काली चाय का एक और घूंट लेते हुए कहा। 3 दिन बाद, जैसा कि उन्होंने कहा था, रॉकी ने निरीक्षण के लिए शहर में गार्ड कोर का दौरा करने के लिए 1 दिन की छुट्टी ली। थंडरहॉक सिटी का गार्ड कैंप शहरी जिले से सटा हुआ था, लेकिन सुरक्षा कारणों से सिटी लॉर्ड्स मैंशन से काफी दूर था। इसलिए हालांकि रॉकी सुबह सुबह सिटी लॉर्ड्स मैंशन से निकल पड़ा था, लेकिन जब तक वह गाड़ी से कैंप पहुंचा तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। शिविर में पहुंचते ही लिलिया उसे तुरंत प्रशिक्षण स्थल ले गई। चूंकि मोटे गार्ड कोर का नया प्रशिक्षक बन गया था, इसलिए शहर के भीतर गश्त करने वालों के अलावा बाकी सभी गार्डों को वह सुबह से रात तक प्रशिक्षण स्थल पर ही रखता था। जब रॉकी लिलिया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण स्थल के पास पहुंचा तो उसने अभी तक किसी को नहीं देखा था, लेकिन वह मोटे की आवाज को बिजली की तरह गड़गड़ाते हुए सुन सकता था। तेज दौड़ो, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? जल्दी करो, अगर कोई पीछे रह गया तो सबको सजा के तौर पर भागना पड़ेगा। आवाज की दिशा में देखते हुए रॉकी ने तुरंत देखा कि मोटे द बीस्टमैन प्रशिक्षण मैदान के बीच में खड़ा था, शर्टलेस और एक टीचिंग विप पकड़े हुए एक दुष्ट फोरमैन की तरह गार्डों पर चिल्ला रहा था। जहां तक गार्डों पर लगातार चिल्लाने की बात है तो वे प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर कतार में दौड़ रहे थे। रॉकी ने सरसरी निगाह डाली और देखा कि प्रशिक्षण में 100 से ज्यादा गार्ड हिस्सा ले रहे थे। जाहिर है शहर में गश्त करने वालों को छोड़कर बाकी सभी गार्ड यहां मौजूद थे। वे भी मोटे की तरह बिना शर्ट के थे, पसीने से लथपथ और धूप में उनके पसीने की बूंदें चमक रही थीं। देखो वह है ना, यह नगर स्वामी है क्या? जहां मुझे देखने दो। जब रॉकी लिलिया के नेतृत्व में प्रशिक्षण मैदान के पास पहुंचा तो मैदान के चारों ओर दौड़ रहे गार्डों ने तुरंत उसे देख लिया, जिससे कुछ हलचल मच गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि थंडरहॉक सिटी के निवासियों की नजर में रॉकी स्काई सिटी में सर्वोच्च अस्तित्व था, जिसका सभी सम्मान करते थे और जिसे शायद ही कभी देखा जाता था। इसलिए जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, यहां तक कि वे रुक भी गए। ऐसे बहुत कम गार्ड थे जिन्होंने रॉकी को देखा था। स्काईपोर्ट के लिए जिम्मेदार कुछ गार्डों को छोड़कर लगभग किसी ने भी सिटी लॉर्ड से सही मायने में मुलाकात नहीं की थी, लेकिन गार्डों ने अपने सिटी लॉर्ड के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। गार्ड कोर के बीच रॉकी के बारे में काफी अफवाहें थी, जिनमें से सबसे पुरानी अफवाहें उस समय की थी जब आया अभी भी कैप्टन थे। कैप्टन आयर, जिसने कड़ी मेहनत से लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की खोज की थी और अंततः रॉकी के भाग्य को सुधारने में सहायक हुआ था। जब वह गार्ड का कैप्टन था तब उसने रॉकी के बारे में बुरा भला कहा था, यहां तक कि उसने रॉकी को पूरी तरह से असफल व्यक्ति बताया था। उसके शब्दों को पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहा जा सकता था क्योंकि रॉकी वाकई बहुत नाकाफी हुआ करता था। हालांकि आय की गपशप की वजह से पहरेदारों को ये धारणा जरूर हो गई कि उनका सिटी लॉर्ड बेअसर है, लेकिन जल्द ही थंडहॉक शहर में हालात उलट पुलट हो गए। कैप्टन आय और प्रशासनिक अधिकारी पेरोलों को एक एक करके निर्वासित कर दिया गया और रॉकी ने अपना शून्य जादुई कवच भी धारण कर लिया था। इन खबरों ने पहरेदारों को हैरान कर दिया। कुछ ही देर बाद ये खबर कि नगर स्वामी और कैप्टन लिलिया राक्षसों का शिकार करने उस भूमि पर गए हैं, पहरेदारों को और भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। अचानक किसी भी पहरेदार की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने नगर स्वामी को हरा हुआ कहे। हालांकि पहरेदार अब रॉकी को हरा हुआ नहीं मानते, लेकिन वह असल में किस तरह का नगर स्वामी था यह उनके लिए एक रहस्य बना हुआ था। उन्होंने रॉकी को बहुत कम देखा था और उसके बारे में अफवाहें इतनी फैली हुई थी कि उनके मन में उसकी एक सुसंगत छवि बनाना असंभव था। इसलिए जब रॉकी व्यक्तिगत रूप से शिविर में आया तो गार्ड असाधारण रूप से उत्साहित हो गए। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि नगर स्वामी वास्तव में कैसा दिखता है। तुम बेवकूफ क्या कर रहे हो, किसने तुम्हें रुकने को कहा? लेकिन जैसे ही रॉकी के कारण भागते हुए सैनिक रुके, मोटे की दहाड़ फिर से हवा में गूंज उठी। नगरपालिका आपके प्रशिक्षण का निरीक्षण करने आई है और आप इतनी ढिलाई बरत रहे हैं, क्या आप जानबूझकर मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? मोटे चिल्लाते हुए सैनिकों की ओर बढ़ा और साथ ही उसने अपने हाथ में शिक्षण चाबुक भी उठा लिया। इस दृश्य को देखकर गार्ड भागकर अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े और तुरंत ही वापस ट्रैक पर आ गए, पहले से भी अधिक तेजी से भागने लगे। नगर स्वामी अपने शिक्षण चाबुक से गार्डों को पुनः सक्रिय करने के बाद मोटे आसानी से रॉकी की ओर बढ़ गया। हाथ कैसा है? मोटे की ओर देखते हुए रॉकी ने उसकी चोट के बारे में पूछा, जबकि मन ही मन वह आश्चर्यचकित था कि बीस्टमैन ने इतना मांसल शरीर कैसे बनाया। महाराज, ये तो ठीक हो गया है, रॉकी को मुस्कुराते हुए मोटे ने अपने आधे कटे हुए हाथ को हिलाया। जिस पर अब तक पट्टी नहीं बंधी थी वह स्पष्ट रूप से ठीक हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मोटे पहले से ही एक हाथ के साथ रहने के लिए अनुकूलित हो गया था। इससे रॉकी को काफी राहत मिली, इसलिए उसने दौड़ते हुए गार्डों की ओर देखा और पूछा, ये लोग कैसे हैं? इतना खराब भी नहीं, ट्रैक की ओर देखते हुए मोटे ने टिप्पणी की। इन गार्ड्स की नींव भले ही कमजोर हो, लेकिन उचित प्रशिक्षण के साथ वे निश्चित रूप से युद्ध के लिए तैयार होंगे। इसके अलावा उनमें से कुछ होनहार रंगरूट हैं, केंद्रित विकास के साथ वे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सुनने में अच्छा है, मोटे के शब्दों से रॉकी ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी उम्मीदें बढ़ गईं क्योंकि उसे थंडहॉक सिटी के गार्ड कोर से बहुत उम्मीदें थीं। थंडहॉक शहर अंततः विकसित और विस्तारित होगा। समय के साथ शहर की गार्ड कोर का आकार न केवल बढ़ेगा बल्कि एक वास्तविक सैन्य बल भी होगा। तब तक वर्तमान गार्ड कोर की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उस समय तक ये गार्ड अनुभवी सैनिक बन चुके होंगे तथा थंडहॉक सिटी के सशस्त्र बलों के आवश्यक आधारशिला के रूप में कार्य कर रहे होंगे। ये बात मन में रखते हुए रॉकी ने मोटे की ओर देखा। इन गार्डों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करो, लेकिन बहुत कठोर मत बनो, मुझे डर है कि वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। यद्यपि यह मोटे की प्रशिक्षण पद्धति की उसकी पहली झलक थी, फिर भी रॉकी कल्पना कर सकता था कि मोटे किस प्रकार गार्डों को प्रशिक्षित करता होगा। ये सीधा और क्रूर दोनों होगा। इस तरह के प्रारंभिक तरीके ठीक थे क्योंकि स्टील बिना तपाई के स्टील नहीं रह जाता और जेड बिना पॉलिश किए जेड नहीं रह जाता, लेकिन रॉकी को डर था कि मोटे तपाई और पॉलिश करने में बहुत कठोर हो सकता है। चिंता मत करो मेरे स्वामी, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ, जोरदार हंसी के साथ मोटे ने अपनी छाती ठोंकी, रॉकी को आश्वस्त किया, फिर धारणा जारी रखा और अपना टीचिंग विप लहराते हुए गार्डों की ओर वापस चला गया। रॉकी दोपहर तक गार्ड कोर के साथ रहा, उसके बाद वह सिटी लॉर्ड्स मेंशन में वापस लौट गया और जब वह वापस लौटा तो बहुत खुश था। उन्होंने लगभग पूरा दिन गार्डों के साथ बिताया और पूरे दिन उनका प्रशिक्षण देखा। ये कहना जरूरी है कि हालांकि मोटे का प्रशिक्षण थोड़ा कठोर था, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित था। दौड़ने के बाद शारीरिक व्यायामों की एक श्रृंखला शुरू हुई और दोपहर के भोजन के बाद वे सामूहिक युद्ध अभ्यास में लग गए। मोटे ने प्रत्येक प्रशिक्षण खंड को बहुत ही उचित ढंग से व्यवस्थित किया था। हालांकि यह प्रशिक्षण कठिन और दर्दनाक था, फिर भी पहरेदारों के लिए इससे कई लाभ हुए, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें जल्द ही रॉकी के साथ भाड़े के सैनिकों के संघ द्वारा सौंपे गए कई मिशन पूरे करने के लिए उस जमीन पर जाना था। ऐसे मामलों में गहन प्रशिक्षण एक जरूरत बन गया और यही एकमात्र तरीका था जिससे पहरेदार राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में बच सकते थे। पहरेदारों की कड़ी मेहनत देखकर रॉकी की हिम्मत नहीं हुई कि वह भी ढिलाई बरते। लौटते ही वह सीधे वर्कशॉप में गया और देर रात तक काम करते हुए एक के बाद एक उपकरणों पर रून लिखने लगा। देर रात एक व्यस्त दिन के बाद रॉकी आखिरकार अपने बेडरूम में लौटा। फिर भी उसने तुरंत आराम नहीं किया। हालांकि वह बिस्तर पर लेटा रहा, उसने पहले खरीदा हुआ दानव का नुकीला दांत निकाला। अपने हाथ में दानव के दांत को पकड़े हुए और लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए रॉकी ने ध्यानपूर्वक उसे महसूस करते हुए उसके पैटर्न की जांच की। लगभग उसे छोड़ने में असमर्थ था। उसे सचमुच दानव का नुकीला दांत बहुत पसंद था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह किस दानव का था। रॉकी को यह इतना पसंद था कि उसने इसे प्रयोग के तौर पर खरीदा था, लेकिन इतने समय बाद भी उस पर एक भी रून नहीं अंकित किया था। रॉकी थोड़ा हिचकिचा रहा था, इसलिए वह दानव के नुकीले दांत को जल्दबाजी में बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक वह उसे खंजर न बना ले, ताकि उस पर रून अंकित करने में देर न लगे। इसके अलावा अगर उसे और भी बेहतर बना दिया जाए तो वह उस पर सीधे एक दूसरे स्तर का रून अंकित करने पर भी विचार कर रहा था। इस विचार के कारण ही वह हर रात सोने से पहले दानव के नुकीले दांत के साथ खेलता था, उसे ध्यान से महसूस करता था और उससे परिचित होता था, ताकि जब वह वास्तव में उस पर रून्स लिखना शुरू करे तो वह अधिक कुशल हो जाए। इस प्रकार रॉकी ने सोने की तैयारी करने से पहले काफी देर तक दानव के दांत के साथ खेला। हालांकि जैसे ही वह लेटा और आंखें बंद भी नहीं कर पाया, कुछ अप्रत्याशित हुआ। रॉकी को अचानक अपनी जादुई शक्ति का एहसास हुआ जो उसके भीतर अचानक जाग उठी। ये है एक सफलता। उसकी जादुई शक्ति का प्रभाव महसूस करते हुए लेटा हुआ रॉकी तुरंत उठ बैठा और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। यद्यपि वह केवल प्रथम स्तर का जादूगर था और जादुई शक्ति के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता था, फिर भी वह कम से कम ये जानता था कि इस तरह की अचानक हलचल आमतौर पर सफलता का संकेत देती है, जिसका अर्थ था कि वह स्तर दो का जादूगर बनने वाला था। ये निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित आश्चर्य था, लेकिन रॉकी को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिलिया ने एक बार कहा था कि जादुई शक्ति में निरंतर सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका निरंतर उपयोग करना और हर बार उसे समाप्त करना। हर बार जब जादुई शक्ति समाप्त हो जाती और फिर पुनः प्राप्त हो जाती तो वह अपने मौजूदा आधार पर थोड़ी बढ़ जाती। समय के साथ ये स्वाभाविक रूप से जादुई शक्ति को उसकी पिछली सीमाओं से आगे ले जाता। माना रून सीखने के बाद से रॉकी की जादुई शक्ति अक्सर रूनों के लगातार अंकन के कारण क्षीण हो जाती थी, खासकर हाल के दिनों में जब उसने हर दिन कई उपकरणों पर सैकड़ों रून अंकित किए थे जब तक कि उसकी जादुई शक्ति समाप्त नहीं हो गई। शायद इसी तीव्र उपभोग के कारण रॉकी की जादुई शक्ति नष्ट हो गई थी। यह महसूस करते हुए कि वह आगे बढ़ने वाला है, रॉकी जल्दी से बिस्तर से उठ बैठा। फिर उसने अपना मन एकाग्र किया और सचेतन रूप से अपने भीतर की जादुई शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि किसी सफलता के दौरान जादुई शक्ति बेहद अस्थिर हो जाती थी। उसे स्थिर करने के लिए उसे सक्रिय रूप से नियंत्रित करना जरूरी था, वरना अनियंत्रित जादुई शक्ति आसानी से पलटकर रॉकी को घायल कर सकती थी। हालांकि ये काम कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। हालांकि रॉकी ने अपनी जादुई शक्ति को दबाने और शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह उसे दबाता उसके शरीर के अंदर का प्रतिरोध उतना ही जाहिर होता जाता और आखिरकार वह उसे दबा ही नहीं पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार उसने अपने अंदर की जादुई शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे रॉकी ने निराशा में अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये स्थिति स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं थी। उसने पहले ही काफी समय रून बनाने में लगा दिया था और उसके शरीर में लगभग कोई जादुई शक्ति बची ही नहीं होगी। इतनी कम जादुई शक्ति को नियंत्रित करने में वह कैसे असमर्थ हो सकता था? बहरहाल नामुमकिन हो चुका था। उसके शरीर में बची हुई थोड़ी सी जादुई शक्ति को न सिर्फ नियंत्रित करना मुश्किल हो गया, बल्कि वह इतनी उत्तेजित भी हो गई कि रॉकी भी उसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये परेशानी वाली बात थी। प्रथम स्तर का जादूगर होने के कारण रॉकी को जादुई शक्ति के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, जिससे वह निश्चित हो गया कि क्या करना है। हालांकि वह घबरा गया था, उसके शरीर के अंदर की जादुई शक्ति जोर जोर से हिल रही थी और रॉकी यह नहीं देख पा रहा था कि उसकी त्वचा पहले ही गहरे लाल रंग में बदल चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी त्वचा के नीचे भयंकर लपटें जल रही हों, उसे इतनी बुरी तरह झुलसा रही हों कि उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल फट जाएगा। इससे रॉकी को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने जल्दी से लिलिया को मदद के लिए ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। जैसे ही वह बिस्तर से उठा, वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। कुछ कोई व्यक्ति। जमीन पर लेटे लेटे रॉकी ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। जब उसने दरवाजे की तरफ रेंगने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा था? यह क्या स्थिति थी? शक्तिहीन जमीन पर पड़ा रॉकी चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकाल पा रहा था, रेंग कर दरवाजे तक जाना चाहता था पर जोर नहीं लगा पा रहा था, जिससे वह पूरी तरह टूट गया। उसे तो ये भी लग रहा था कि ऐसी हतप्रभ अवस्था में वह मर ही जाएगा। लेकिन ठीक उसी समय, जब रॉकी सचमुच अपने कमरे में उलझन में मर गया होगा, तभी एक खड़खड़ाहट की आवाज हुई क्योंकि दानव का दांत, जिसे उसने लापरवाही से बिस्तर के किनारे रख दिया था, जमीन पर गिर गया। रॉकी की शक्तिहीन और असहाय निगाहों के सामने जमीन पर गिरा हुआ दानव का दांत किसी आकर्षण से खींचा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसकी ओर लुढ़कता हुआ तब तक जा रहा था जब तक कि वह उसके पास आकर रुक नहीं गया। इसके तुरंत बाद दानव के नुकीले दांत से एक जबरदस्त खिंचाव उत्पन्न हुआ जिसने अचानक रॉकी के पूरे शरीर को घेर लिया और उसके अंदर की सारी उत्तेजित जादुई शक्ति को चूस लिया। रॉकी की ओर लुढ़कने वाले दानव के दांत ने तुरंत ही उसके भीतर विस्फोट होने वाली सारी जादुई शक्ति को सोख लिया जिससे वह पूरी तरह से निढाल हो गया। जैसे ही उसका जादू खत्म हुआ, रॉकी, जो जमीन पर पड़ा था और हिल डुल भी नहीं पा रहा था, नहीं चीख पा रहा था, पंख के समान हल्का महसूस कर रहा था, मानो जादुई शक्ति के साथ उसका सारा बोझ गायब हो गया हो। कुछ ही देर बाद वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जमीन से उठने के बाद वह कई बार हौंफने लगा, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है, मानो उसने कपड़े पहने हुए ही स्नान किया हो। लेकिन साथ ही वह लेवल 2 का जादूगर भी बन गया था। अभी अभी हुए खतरनाक अनुभव के बाद वह सफलतापूर्वक लेवल 2 के जादूगर बन गए थे। हालांकि सफलता मिलने के बाद रॉकी ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, बल्कि उसे किसी और बात की चिंता थी, इसलिए उठते ही उसने झट से जमीन से दानव का नुकीला दांत उठा लिया। आखिर क्या हुआ? दानव के दांत को उठाकर उसका निरीक्षण करते हुए रॉकी हाल की घटनाओं के बारे में सोचने और भय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ध्यान से याद करने पर उसे समझ आया कि उसकी सफलता के दौरान जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी जिससे उसके शरीर की जादुई शक्ति ने उथल पुथल मचा दी और उसकी जान लगभग चली गई। अगर उसके हाथ में दानव के दांत का चमत्कारी प्रदर्शन न होता तो शायद वह बिना समझे ही मर जाता। लेकिन ये रहस्यमय दानव का दांत उसकी सारी जादुई शक्ति क्यों चूस लेगा? अपने हाथ में दानव के दांत को देखकर रॉकी पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने जो दानव का दांत खरीदा था उसके बारे में उसकी जानकारी वास्तव में बहुत सीमित थी। उसे ये भी नहीं पता था कि ये दांत किस उच्च स्तरीय दानव का है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये दांत बिल्कुल भी साधारण नहीं है। क्या ये एक खजाना हो सकता है? इस विचार के साथ वह विस्तृत जांच के लिए दानव के दांत को पास ले आया ताकि कुछ सुराग मिल सके। लेकिन तभी एक तीखी आवाज आई और रॉकी ने पाया कि उसके हाथ में पकड़े हुए दानव के दांत पर एक दरार आ गई थी, जिसके बाद दरार पूरे दांत में फैल गई जिससे उसमें बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। ये टूटा हुआ है, टूटा हुआ है! अपने हाथ में पकड़े हुए दानव के दांत को टुकड़ों में टूटते देख रॉकी वहीं दंग रह गया। क्या ये ऐसे ही टूट रहा था? नहीं, दानव का नुकीला दांत टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ था। हालांकि उसकी पूरी सतह टूट गई थी, बस उसकी बाहरी परत ही टूट रही थी। टुकड़ों के छिल जाने के बाद दानव के दांत का असली रूप सामने आया। अब पहले से काफी छोटा दानव का नुकीला दांत हथेली के आकार का रह गया था। इससे भी खास बात यह थी कि वह दांत क्रिस्टल की तरह साफ और चमकदार हो गया था, हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था, बिल्कुल किसी कला के उत्कृष्ट नक्काशीदार नमूने जैसा, अपनी सुंदरता में अद्भुत। ये जब रॉकी ने अपनी आंखों के सामने दानव के दांत को बदलते देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास और घोर भ्रम का मिश्रण था। क्या ये दानव के दांत का असली रूप था? अपने हाथ में कलात्मक दानव के दांत को लोड करते हुए उसके दिमाग में केवल यही बात थी कि आखिर उसने क्या खरीदा है। ये वस्तु वास्तव में एक दानव का दांत हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से किसी साधारण दानव का नहीं था। जबरदस्त! दानव के दांत की असाधारण प्रकृति को महसूस करते हुए रॉकी उत्साह में चिल्लाया। ये स्पष्ट था कि वह एक खजाने पर ठोकर खा गया था, लेकिन शायद अत्यधिक उत्साह के कारण उसने अनजाने में अपना हाथ हिला दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया उसके हाथ में जकड़ी हुई बांह से नीली रोशनी की एक किरण निकली। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ और बेडरूम की दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। इस परिणाम से प्रसन्नचित रॉकी अचानक स्तब्ध रह गया और दीवार में बने छेद को देखता रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। अल्पविराम, बैकक्वोट 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 डॉट 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 डॉट। सोचिए ऐसी घटना घटी, क्या आप घायल हैं? लिलिया ने रॉकी की ओर चिंता से भरे चिंतित चेहरे से देखा। मैं ठीक हूँ, उसने अपनी ओर हाथ हिलाकर ये दर्शाया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है, फिर पूछा, आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? ये चीज वास्तव में क्या है? बोलते समय उसने दानव का दांत निकाला जो क्रिस्टल जैसा हो गया था और फिर उसने अपनी निगाहें लिलिया, एलिन और मोटे पर घुमाई। अगले दिन सुबह का समय था। पिछली रात की घटनाओं के बाद रॉकी ने सुबह सबसे पहले लिलिया और बाकी लोगों को सिटी लॉर्ड के महल में बुलाया और पिछली रात के अपने अनुभव सुनाए। उसकी कहानी सुनकर तीनों दंग रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रॉकी को पिछली रात इतनी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। सबसे ज्यादा चिंता स्वाभाविक रूप से लिलिया को ही थी। रॉकी ने जब उसे दिखाने के लिए दानव का नुकीला दांत उठाया तो उसने उसे छीनकर एक तरफ फेंक दिया। ये चीज बहुत खतरनाक है, इसे मत पकड़ो। यह दानव के नुकीले दांत को कचरे की तरह फेंके जाते देख रॉकी कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया, लेकिन सौभाग्य से मोटे वहां गया और उसे उठा लिया। महाराज, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दांत ने आपकी सारी जादुई शक्ति सोख ली है? दानव के दांत को वापस उठाने के बाद मोटे ने उसे देखा और पूछा। ये सही है, रॉकी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसी समय एलिन और लिलिया भी मोटे के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उन तीनों ने मिलकर उस अजीब दांत की सावधानीपूर्वक जांच की। कुछ देर तक इसका अध्ययन करने के बाद लिलिया ने अंततः कहा, ये चीज काफी खतरनाक लग रही है। उसी समय एलिन ने ये भी कहा, ये चीज काफी मूल्यवान लगती है। दोनों महिलाओं ने दानव के दांत को सभी कोनों से जांचा और प्रत्येक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साफ है, उनके विचार उनके व्यक्तित्व से काफी मेल खाते थे और दोनों सही थे। वह अनजाना दानव का नुकीला दांत वाकई खतरनाक था। अगर किसी को शक हो तो उसे बस रॉकी के बेडरूम की दीवार में बने उस बड़े से छेद को देखना होगा। साथ ही, जैसा कि एलिन ने कहा, दानव का नुकीला दांत शायद बहुत कीमती था। इसकी संभावित शक्तियों को छोड़ भी दें तो भी किसी उत्कृष्ट कलाकृति की तरह इसका रूप ही बाजार में ऊंची कीमत दिला सकता था। दुर्भाग्य से, हालांकि उनके विचार गलत नहीं थे, लेकिन उनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं था। इसलिए रॉकी मोटे की ओर मुड़ा, जो इस पूरे समय चुप रहा था। एक पूर्व दानव शिकारी के रूप में भले ही मोटे यह नहीं पहचान सका कि दांत किस उच्च स्तरीय दानव से आया है, फिर भी उसे कम से कम एक मोटा निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वास्तव में किसी और द्वारा किए गए अध्ययन से भी अधिक सावधानीपूर्वक अध्ययन के बाद मोटे ने अंततः अपना सिर धीरे से उठाया और रॉकी को दानव का दांत वापस देते हुए गंभीरता से कहा, बधाई हो मेरे प्रभु। हम अप्रत्याशित टिप्पणी सुनकर रॉकी अचंभित रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। मोटे ने फिर आगे कहा, महाराज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये किसी उच्च स्तरीय राक्षस का दांत होना चाहिए। महाराज, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये दानव का दांत संभवतः किसी उच्च स्तरीय दानव से आया है, मोटे ने दानव का दांत रॉकी को वापस देते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, रॉकी सहित वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और अगले ही पल उनकी निगाहें रॉकी के हाथ में रखे दानव के दांत पर टिक गईं। ये दानव का दांत, क्या ये वास्तव में किसी उच्च स्तरीय दानव का हो सकता है? निष्कर्ष इतना भयावह था कि सभी लोग काफी देर तक स्तब्ध रह गए। उसके बाद रॉकी ने गहरी सांस लेते हुए मोटे से पूछा, मोटे, तुमने ये कैसे पता लगाया? यदि ये दानव का दांत वास्तव में किसी उच्च स्तरीय दानव का होता तो इसे निश्चित रूप से एक खजाना माना जाता, संभवतः रॉकी के शून्य जादू कवच के सेट से भी अधिक मूल्यवान। लेकिन यह इस बात पर निर्भर था कि मोटे गलत नहीं था, अन्यथा एक बड़ी गलतफहमी हो सकती थी। मुझे विश्वास है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। हालांकि रॉकी के प्रश्न के उत्तर में मोटे ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, यद्यपि मैंने वास्तव में कभी किसी उच्च स्तरीय राक्षस का शिकार नहीं किया है, फिर भी मैंने दानव एक्सचेंज में उच्च स्तरीय राक्षसों की कुछ वस्तुएं देखी हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ समझ है। हालांकि राक्षसों के लिए केवल उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय श्रेणियां हैं, इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए उच्च स्तरीय राक्षस की कोई भी वस्तु, चाहे वह दांत, सींग या त्वचा हो, निम्न स्तरीय राक्षसों की वस्तुओं से मौलिक रूप से भिन्न होती है। यह अंतर उनके सार से उपजा है। उदाहरण के लिए इस दांत को ही लीजिए, यह स्पष्ट रूप से एक दानव का दांत है, फिर भी यह जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकता है। केवल इसी बिंदु से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यह निश्चित रूप से निम्न स्तर के दानव से नहीं आता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली निम्न स्तर के दानव के पास भी ऐसी क्षमता नहीं होती है, और यदि होती भी तो उनकी मृत्यु के बाद ये क्षमता लुप्त हो जाती है। लेकिन उच्च स्तर के दानवों के मामले में ऐसा नहीं है। उच्च स्तरीय राक्षस सभी अत्यधिक शक्तिशाली भयानक प्राणी होते हैं और लगभग सभी में विशेष क्षमताएं होती हैं जो आमतौर पर उनकी मृत्यु के बाद भी बनी रहती हैं, जैसे ये दांत। यही कारण है कि उच्च स्तरीय राक्षसों का बाजार मूल्य निम्न स्तरीय राक्षसों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। तो यह ऐसा है। मोटे के स्पष्टीकरण के बाद रॉकी और अन्य लोगों को अंततः स्थिति समझ में आ गई और उन्हें लगा कि मोटे ने जो कहा वह बहुत सही था। वे हाल ही में दानव एक्सचेंज गए थे और हालांकि उन्होंने केवल पहली 3 मंजिलें ही देखी थी, फिर भी उन्हें निम्न स्तरीय दानवों की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दिखी जिसमें कोई विशेष क्षमताएं हों। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसा कि मोटे ने बताया, केवल उच्च स्तरीय दानवों की वस्तुओं में ही विशेष क्षमताएं होती हैं, निम्न स्तरीय दानवों में नहीं। यदि ऐसा था तो रॉकी द्वारा प्राप्त किया गया दानव का दांत वास्तव में एक उच्च स्तरीय दानव का हो सकता है। इस एहसास के साथ रॉकी अमीर हो गया था। तुम्हें पता ही होगा कि उसने ये दानव का नुकीला दांत सिर्फ 500 सोने के सिक्कों में खरीदा था, जो पहले से ही काफी सस्ता था। और अगर दानव का नुकीला दांत वाकई किसी उच्च स्तरीय दानव का था तो रॉकी जरूर मालामाल हो जाता। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। और अगर यह सचमुच ऐसा है तो मुझे इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए कि इस दांत में क्या विशेष क्षमता है। ये जानने पर कि उसके हाथ में जो दानव का दांत है वह किसी उच्च स्तरीय दानव का हो सकता है, रॉकी को उससे और भी अधिक लगाव हो गया और उसने तुरंत इसकी आगे जांच करने की योजना बनाई। अब वह जानता था कि दानव का दांत जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकता है, लेकिन वह अभी भी विशिष्ट प्रभावों और सक्रियण के लिए सटीक स्थितियों के बारे में स्पष्ट नहीं था। अन्य बातों के अलावा ये ज्ञान दांत के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक था। इसके बाद एलिन और मोटे दोनों सिटी लॉर्ड के भवन से चले गए, जबकि केवल लिलिया ही पीछे रह गई। रॉकी के उत्तेजित चेहरे को देखकर लिलिया को पता चल गया कि वह निश्चित रूप से फिर से कुछ लापरवाही करने वाला है, इसलिए पिछली रात जैसी एक और घटना को रोकने के लिए उसके पास उसके साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और अनावश्यक खतरे से बचने के लिए वे दोनों सिटी लॉर्ड के भवन के पीछे वाले बगीचे में चले गए, और सुरक्षा की दृष्टि से रॉकी ने अपना शून्य जादू कवच भी पहन लिया ताकि यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो वह उसे बचा सके। सिटी लॉर्ड के भवन के पीछे वाले बगीचे में रॉकी और लिलिया एक साथ खड़े थे। दोनों रॉकी के हाथ में पकड़े हुए दानव के दांत को देख रहे थे। ऐसा लगता है कि ये दांत मन को अवशोषित कर सकता है। क्रिस्टल जैसे दानव के दांत को अपने हाथ में पकड़े हुए रॉकी ने एक क्षण के लिए उसे महसूस किया, लेकिन उसे कल वाली चूसने वाली शक्ति का एहसास नहीं हुआ और उसकी जादुई शक्ति भी सीधे तौर पर अवशोषित नहीं हो रही थी। अपनी जादुई शक्ति से इसे छूकर देखो और देखो कि क्या कोई प्रभाव पड़ता है, लिलिया ने इस समय उसे बगल से याद दिलाया। ठीक है, रॉकी ने सहमति जताते हुए अपने शरीर के अंदर की जादुई शक्ति को सक्रिय किया और उसे अपने हाथ में मौजूद दांत की ओर बढ़ने पर मजबूर किया। जैसे ही उनका संपर्क हुआ, दानव के नुकीले दांत के अंदर से एक जबरदस्त चूषण शक्ति निकली, मानो किसी विशाल जबड़े ने रॉकी के शरीर से सारी जादुई शक्ति तुरंत चूस ली हो। नहीं, ये सिर्फ रॉकी के शरीर के भीतर की जादुई शक्ति ही नहीं थी जो खत्म हो रही थी, यहां तक कि उसके शून्य जादुई कवच पर मौजूद रूनों में निहित जादुई शक्ति भी खत्म हो रही थी। ये सब पलक झपकते ही हुआ, इतनी तेजी से कि रॉकी को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जब तक वह प्रतिक्रिया करता, उसके हाथ में पकड़ा हुआ दानव का दांत नीली रोशनी के फव्वारे छोड़ रहा था, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत जैसी पिछली रात थी। रॉकी, इसे फेंक दो। लेकिन उसी पल लिलिया अचानक चिल्लाए और रॉकी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसके हाथ पर लात मार दी। जोर ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि दानव का नुकीला दांत उसकी पकड़ से उड़ गया। ठीक उसी समय जब लिलिया की लात से दांत उड़ गया, अचानक फैंग से एक नीली रोशनी निकली। पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी से प्रभावित एक बड़ा पेड़ पूरी तरह से हवा में उड़ गया। विशाल तना कुछ देर तक उड़ता रहा और फिर जोर से जमीन पर गिरकर रॉकी के ठीक सामने आ गिरा। पलक झपकते ही घटित हुए इस दृश्य ने रॉकी और लिलिया दोनों को ही स्तब्ध कर दिया। दोनों में से किसी ने भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। यह नीली रोशनी क्या थी जो दानव के दांत से निकल रही थी? इसमें इतनी जबरदस्त शक्ति थी कि यह जादुई तोप की ताकत से भी ज्यादा थी। और यदि लिलिया ने दानव के दांत को दूर धकेलने में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो नीली रोशनी रॉकी के हाथों में ही फट जाती और उसके परिणाम अकल्पनीय होते। आपको ये समझना होगा कि उसका शून्य जादुई कवच और उस पर लगा मन रून पहले ही समाप्त हो चुका था। मन के बिना शून्य जादुई कवच एक साधारण कवच मात्र है जो उस तीव्रता के विस्फोट का सामना करने में असमर्थ है। हल्की सी खनक के साथ हवा में उछाला गया दानव का दांत अब धीरे से जमीन पर गिरा और मानो जिंदा हो रॉकी के पैरों की ओर लुढ़क गया। लेकिन इस समय रॉकी उसे उठाने से भी बहुत डर रहा था। ये बात बहुत खतरनाक है। अपने पैरों पर गिरते हुए दानव के दांत को देखकर रॉकी ने उसे तुरंत उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह बहुत खतरनाक था। काफी देर बाद ही वह सावधानी से झुका और उसने सावधानी पूर्वक जमीन से दानव का दांत उठा लिया। और जब उसने दानव का दांत उठाया तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे रॉकी को राहत की सांस मिली। डरो मत, इस चीज द्वारा अवशोषित जादुई शक्ति समाप्त हो गई होगी, अब ये सुरक्षित होनी चाहिए। लिलिया ने रॉकी की ओर कुछ प्रसन्नता से देखा और फिर उसके पास जाकर उसके हाथ में रखे दानव के दांत पर नजर डाली। क्या कल रात आपके सामने जो स्थिति थी वही आज भी है? हाँ, कल रात भी ऐसा ही हुआ था। पलक झपकते ही मेरे शयन कक्ष में विस्फोट हो गया, लेकिन बिजली निश्चित रूप से उतनी तेज नहीं थी जितनी अभी थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, रॉकी आखिरकार निश्चिंत हो गया और फिर लिलिया को समझाया, साथ ही उस बड़े पेड़ की ओर भी देखा जो उसके पैरों पर गिर गया था। वह डरे बिना नहीं रह सका। अगर कल रात उसके बेडरूम में हुआ धमाका अभी हुए धमाके जितना ही जोरदार होता तो उसका बेडरूम सिर्फ दीवार में एक छेद से ज्यादा होता, पूरा कमरा ही जमींदोज हो जाता। तो ये दानव का दांत न केवल जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकता है, बल्कि अवशोषित जादुई शक्ति को बाद में उत्सर्जित भी कर सकता है। रॉकी अभी भी सदमे में था। लिलिया ने अपना मुंह खोला। उसके शब्द सही थे, क्योंकि दानव के नुकीले दांत से निकली नीली रोशनी स्पष्ट रूप से मन थी, जिसका अर्थ था कि दानव का नुकीला दांत न केवल मन को अवशोषित कर सकता था बल्कि उसे ठीक उसी तरह छोड़ भी सकता था जैसे उसने अवशोषित किया था। जहां तक इस विस्फोट के कल रात से ज्यादा तेज होने का सवाल है, तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। इस बार दानव के नुकीले दांत ने ज्यादा मन सोख लिया था। पिछली रात इसने केवल रॉकी की जादुई शक्ति को ही अवशोषित नहीं किया था, लेकिन अभी इसने न केवल रॉकी की जादुई शक्ति को अवशोषित किया था, बल्कि शून्य जादुई कवच और मन रून में निहित मन को भी अवशोषित किया था, जिससे स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित मन बहुत अधिक विशाल हो गया था और प्रभाव अधिक आश्चर्यजनक हो गया था। तो यह ऐसा है, लिलिया के समझाने पर रॉकी समझ गया और फिर नीचे देखकर कुछ देर सोचने लगा। काफी देर बाद उसने फिर ऊपर देखा और लिलिया से दूरी बनाते हुए बोला, लिलिया मुझ पर जादू कर दो। क्या? लिलिया इस अनुरोध से थोड़ा अचंभित हो गई, क्योंकि वह उसका इरादा नहीं समझ पाई। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये दांत न केवल मन बल्कि जादू को भी अवशोषित कर सकता है। मन, जादुई शक्ति और जादू, हालांकि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मूलतः एक ही शक्ति है, अंतर केवल उनके प्रकटीकरण के रूप में है। तो अगर दानव का नुकीला दांत मन और जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकता है, तो क्या वह जादुई शक्ति से रूपांतरित जादू को भी अवशोषित कर सकता है? रॉकी वास्तव में जानना चाहता था, इसीलिए उसने लिलिया से ऐसा अनुरोध किया। लिलिया को उसके स्पष्टीकरण के बाद उसका तर्क समझ में आ गया, और यद्यपि वह हिचकिचा रही थी, फिर भी उसने अंततः सिर हिला दिया। लिलिया तीसरे स्तर की योद्धा होने के अलावा दूसरे स्तर की जादूगरनी भी थी। जादुई शक्तियों पर उसका नियंत्रण भले ही उत्कृष्ट न हो, लेकिन फिर भी अच्छा था। इसके बाद उसने दो कदम पीछे हटकर रॉकी पर एक जादुई गोली चलाई। मैजिक बुलेट एक प्रथम स्तरीय जादू है जो फायरबॉल तकनीक से आधी शक्तिशाली है। यदि यह रॉकी को लग भी जाए तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अपनी ओर आती जादुई गोली का सामना करते हुए रॉकी न तो डरा और न ही घबराया, बल्कि अपने हाथ में रखे दानव के दांत को उठा लिया। पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और रॉकी जादुई गोली से कई कदम पीछे गिर गया। तुम ठीक हो? रॉकी को जादुई गोली लगने की उम्मीद न करते हुए लिलिया दौड़कर उसके पास पहुंची और देखा कि उसे गंभीर चोट नहीं लगी थी, जादुई गोली सिर्फ उसकी छाती पर लगी थी। क्या ये चीज जादू को अवशोषित नहीं कर सकती? ये देखकर कि रॉकी ठीक है, लिलिया ने उसके हाथ में रखे दानव के दांत की ओर देखा। नहीं, मैंने निशाना ठीक से नहीं लगाया। लिलिया की तरफ सिर हिलाते हुए रॉकी के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। ऐसा नहीं था कि दानव के दांत ने जादुई गोली को नहीं झेला था, बल्कि इसलिए कि उसने दानव के दांत से जादुई गोली पर सही निशाना नहीं लगाया था, इसलिए उसे गोली लग गई। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, चलो इसे एक बार और करते हैं। रॉकी की ओर आंखें घुमाते हुए लिलिया पहले से अधिक दूर चली गई, क्योंकि दूरी जितनी अधिक होती जादुई गोली का प्रक्षेप पथ उतना ही अधिक होता और रॉकी के पास स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए उतना ही अधिक समय होता। डॉट 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 डॉट। इस तरह रॉकी और लिलिया ने सिटी लॉर्ड के हवेली के पीछे के बगीचे में विभिन्न तरीकों से दानव के दांत के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए और इन दिनों में वे दोनों हर दिन नगर स्वामी के भवन के पिछले बगीचे में बिताते थे। वे दानव के दांतों से छेड़छाड़ करने के तरह तरह के तरीके खोजते थे, मानो वे दोनों शरारती बच्चे बन गए हों। हालांकि यह उनके अथक प्रयोग के कारण ही था कि वे अंततः दानव के नुकीले दांतों के प्रभावों को अच्छी तरह से समझने में कामयाब रहे। दानव के दांत में कई विशेषताएं प्रदर्शित थीं। सबसे पहले, दानव का नुकीला दांत वास्तव में मन, जादुई शक्ति और यहां तक कि जादू को भी अवशोषित कर सकता था। इसके अवशोषण की विशिष्ट ऊपरी सीमा अज्ञात रही। दूसरा, चाहे वह मन हो, जादुई शक्ति हो या दानव के नुकीले दांत द्वारा अवशोषित विभिन्न प्रकार का जादू हो, ये सब शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और दानव के नुकीले दांत के भीतर संग्रहित हो जाएगा। तीसरा, दानव के नुकीले दांतों द्वारा परिवर्तित ऊर्जा अत्यधिक अस्थिर थी। हल्का सा कंपन या मात्र स्पर्श भी दानव के नुकीले दांतों से संचित ऊर्जा को बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ मुक्त कर देता था। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दानव का दांत केवल उसी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था जिसके साथ वह सीधे संपर्क में आता था, अन्यथा इसका कोई प्रभाव नहीं होता था। ये चार निष्कर्ष रॉकी और लिलिया के कई दिनों के लगातार प्रयोगों और व्यक्तिगत अनुभवों का परिणाम थे। इनसे न केवल दानव के नुकीले दांत के प्रभावों को स्पष्ट किया गया, बल्कि रॉकी को इसके संभावित उपयोगों के बारे में नए विचार भी मिले। पहले तो उसने इसे एक रून खंजर में ढालने का इरादा किया, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। चूंकि दानव का नुकीला दांत अपने संपर्क में आने वाले सभी मन को अवशोषित कर सकता था, इसलिए उस पर रून अंकित करना असंभव था। अगर कोई रून को सक्रिय करने की कोशिश करता, तो दानव का नुकीला दांत रून में मौजूद सभी मन को, यहां तक कि उपयोगकर्ता के मन को भी अवशोषित कर लेता, जिससे ये रून हथियार के रूप में अनुपयोगी हो जाता। हालांकि उसका शुरुआती विचार अब संभव नहीं था, रॉकी ने दानव के नुकीले दांत का इस्तेमाल करने का एक और तरीका निकाला था। उसने इसे एक रक्षात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल करने की सोची, जादू या जादुई ऊर्जा के हमलों से बचने के लिए इसकी ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता पर भरोसा करते हुए। यदि इस तरह से उपयोग किया जाए तो क्या दानव का दांत एक शीर्ष स्तरीय रक्षात्मक वस्तु नहीं बन जाएगा? इस नए विचार ने उसे अपने शून्य जादुई कवच में दानव के नुकीले दांत को जड़ने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा करने से उसके शून्य जादुई कवच को जादू या मन के हमलों के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच मिल जाएगा, है ना? बेशक वह इस विचार को तुरंत लागू नहीं कर सकता था क्योंकि वह हाल ही में बहुत व्यस्त था। इसके अलावा इस तरह का बदलाव करना आसान नहीं था, खासकर यह पता लगाना कि दानव के नुकीले दांत को शून्य जादुई कवच के मान को अवशोषित किए बिना कैसे काम करने दिया जाए, जिसका रॉकी अभी तक कोई हल नहीं खोज पाया था। इसलिए वह इस काम को करने के लिए भविष्य में समय मिलने तक ही इंतजार कर सकता था। और दानव के नुकीले दांत के प्रभावों को पूरी तरह समझने के लिए रॉकी ने कई दिनों का काम छोड़ दिया था। इसके प्रभावों को समझने के बाद वह उपकरणों के लिए अपने जादुई काम की प्रगति पर नजर रखने में व्यस्त हो गया। जैसे ही रॉकी ने अपने प्राथमिक कर्तव्यों में खुद को डुबोना शुरू किया, एलिन ने उसे ढूंढ लिया। सर, आप जियाशी के बारे में क्या योजना बना रहे हैं? कौन? जादुई ऊर्जा पेन को पकड़े हुए रॉकी ने उलझन में एलिन की ओर देखा और पूछा। जियाशी, एजोर कॉमर्स गिल्ड की पर्यवेक्षक। रॉकी के चेहरे पर खालीपन देखकर एलिन को उसे याद दिलाना पड़ा। उसके याद दिलाने पर रॉकी को अचानक मामला याद आ गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह अभी तक नहीं गया। हे, नहीं, उसने नहीं किया है। रॉकी की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ एलिन ने प्रसन्नतापूर्वक उसे जियाशी की स्थिति के बारे में बताया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में न तो उसने और न ही रॉकी ने जियाशी को देखा था, रॉकी तो उस घटना को भूल भी गया था, लेकिन एलिन ने नहीं देखा था। वह जियाशी की हर हरकत पर कड़ी नजर रख रही थी। वह जो भी करता, एलिन को सब पता होता था। जियाशी इन दिनों अच्छा समय नहीं बिता रहा था, नहीं, यूं कहें कि उसका समय बहुत बुरा चल रहा था। उसे थंडरहॉक सिटी में आए हुए आधे महीने से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी मुलाकात रॉकी या एलिन से नहीं हुई थी, ऐसी स्थिति जो उसे हताशा की कगार पर पहुंचा रही थी। वह इस बार एजोर कॉमर्स गिल्ड की ओर से व्यापार करने के लिए थंडरहॉक सिटी आया था, लेकिन जब वह किसी से मिल भी नहीं सकता था तो वह सौदा कैसे कर सकता था? इन दिनों ने उसे अत्यधिक चिंतित कर दिया था और उसने व्यापारी जहाज पर रहना भी बंद कर दिया था तथा अधिक सुलभ होने के लिए सीधे थंडरहॉक सिटी के आवासीय क्षेत्र में चला गया था। थंडरहॉक सिटी में आने के बाद वह लगभग हर दिन सिटी लॉर्ड के भवन की ओर दौड़ता था तथा रॉकी को जल्द से जल्द देखने की उम्मीद में हर संभव साधन का उपयोग करता था। आधे महीने में वह सिटी लॉर्ड के महल में एक दर्जन से ज्यादा बार जा चुका था। उसका पिछला घमंड इस तरह की यातनाओं के आगे कब का गायब हो चुका था। रॉकी को बदनाम करना, एलिन, अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात थी और वह थी रॉकी से जल्द मिलना, सौदा पक्का करना, और फिर वह थंडरहॉक सिटी में कभी नहीं आना चाहता था। अफसोस वह ये भी नहीं कर पाया क्योंकि न तो रॉकी और न ही एलिन उसे देख पाते। हालांकि वह रोज सिटी लॉर्ड के महल की ओर दौड़ता था, हर बार उसे विनम्रता से सिटी लॉर्ड के हॉल में ले जाया जाता, जहां 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद कोई आकर उसे बताता कि सिटी लॉर्ड के पास समय नहीं है और उसे अगले दिन आने को कहता। दर्शकों की यह कमी जियाशी को पागल कर रही थी, और यह मत भूलिए कि इस बार वह अकेले नहीं आए थे, उनके साथ अनाज से भरे कम से कम 5 जहाज भी थे। थंडरहॉक शहर में जियाशी के हर अतिरिक्त दिन के लिए व्यापारी जहाजों पर अनाज को भी एक अतिरिक्त दिन के लिए भंडारित करना होगा। हालांकि यह सच है कि अनाज को बहुत लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, लेकिन जहाज के अंधेरे नम गोदाम में यह उतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि इसे थोड़े समय के लिए भंडारित किया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन यदि इसे बहुत अधिक समय तक भंडारित किया जाए और अनाज में फफूंद लग जाए तथा वह खराब होने लगे तो वास्तविक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वह अधीरता से जल रहा था, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। वास्तव में जियाशी की बुद्धिमत्ता के कारण उसे पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन अब तक वह मोटे तौर पर यह समझ चुका था। वह अनुमान लगा सकता था कि रॉकी और एलिन जानबूझकर उससे बच रहे थे और उससे मिलने में आनाकानी कर रहे थे, और इसका कारण निश्चित रूप से पिछला व्यापार सौदा था। शुरुआती दिनों में हालांकि जियाशी को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अभी भी रॉकी के सामने खड़ा होना चाहता था, यह मानते हुए कि जब तक रॉकी को उसके पास अनाज की जरूरत है वह अंततः समझौता कर लेगा और जियाशी ही विजयी होगा। लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। कई बार नजरअंदाज किए जाने के बाद जियाशी पूरी तरह से हार मान चुका था। उसने अंततः एक बात समझ ली थी कि वह वास्तव में स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था और उसने वास्तव में नरमी बरती थी। एक बार जब वह नरम पड़ गया तो जियाशी का दिमाग अधिक चुस्त हो गया और वह जल्द ही बॉस की ओर मुड़ गया। बॉस और एजोर कॉमर्स गिल्ड के बीच काफी अच्छे संबंध थे। एजोर कॉमर्स गिल्ड ने थंडरहॉक सिटी के साथ व्यापार करना शुरू किया, जिसका मुख्य कारण बॉस का संपर्क अधिकारी के रूप में किया गया प्रयास था, और चूंकि बॉस ने थंडरहॉक सिटी में एक बार वित्त अधिकारी के रूप में भी काम किया था, जियाशी को लगा कि यदि वह बॉस से संदेश प्राप्त कर सके या परिचय करवा सके तो वह निश्चित रूप से रॉकी से मिल सकेगा। और जिस बात से वह बेहद खुश हुआ वह ये थी कि जब उसने बोस को ढूंढा और अपना उद्देश्य बताया तो बोस ने तुरंत सहमति दे दी और वादा किया कि वह एलिन से बात करेगा। जियाशी को ये जानकर बेहद खुशी हुई। उसका मानना था कि अगर वह एलिन से मिल पाता तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। इसलिए उसने न सिर्फ बॉस का दिल से शुक्रिया अदा किया बल्कि उसे एक बड़ा तोहफा भी दिया और फिर खबर का इंतजार करने के लिए उत्सुकता से घर लौट आया। जहां तक बॉस का सवाल है, जिसने एक उदार उपहार स्वीकार किया था उसने वास्तव में अपना वचन निभाया और एलिन के साथ बातचीत भी की। दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे मामलों में दखल नहीं देंगे? आप फिर से क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? बताए, क्या आपने उस आदमी से कोई तोहफा लिया था? ये देखकर कि बॉस ने वास्तव में जियाशी का जिक्र किया था, एलिन गुस्से से फूल उठी। जियाशी को उसके हाल पर छोड़ देना उसकी और रॉकी की सोची समझी रणनीति थी, ताकि ओबसियर को अनुशासित किया जा सके और उसे एहसास दिलाया जा सके कि थंडहॉक शहर पर असल में किसका राज है। इसलिए अपने दादाजी की बातों पर एलिन ने खड़खड़ाते ढोल की तरह जोर से सिर हिलाया और दृढ़ता से असहमति जताई। एलिन, तुम्हें जियाशी से मिलना चाहिए, बॉस ने जोर देकर कहा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बॉस ने एलिन को विनम्रता से समझाया, आप और सिटी लॉर्ड इस मामले को बहुत लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं, जो वाकई अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को हताशा की स्थिति में पहुंचा दें और वे हमेशा के लिए चले जाएं, तो क्या होगा? आप इससे कैसे निपटेंगे? तो तुम्हें दादाजी की सलाह माननी चाहिए, जियाशी से मिलना चाहिए, उसे ठीक से समझाना चाहिए और शांत होने देना चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर बॉस ने एलिन की ओर देखा और पाया कि वह आश्चर्य से भरे चेहरे से उसे देख रही थी। काफी देर बाद एलिन ने अंततः कहा, दादाजी आप सबसे चालाक हैं। बॉस को अंगूठा दिखाते हुए एलिन स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि उसके दादाजी का क्या मतलब था। बकवास, बॉस ने आंखें फाड़कर गुस्से से चेहरा बनाया, लेकिन एलिन जरा भी नहीं डरी। वह तेजी से बाहर की ओर भागी और वापस पुकारा, मैं समझ गई, मैं कल जियाशी से मिलूंगी। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे मिलने से पहले 3 दिन इंतजार करो। एलिन को उछलकर दूर जाते देख बॉस ने अपना सिर हिलाया और उसे याद दिलाया। 3 दिन बाद, जैसा उसने कहा था, एलिन सचमुच जियाशी से मिलने गई। ये देखकर कि एलिन आखिरकार आ गई है, जियाशी बहुत खुश हुआ। पिछली बार उसने जो अहंकार दिखाया था वह अब नहीं रहा और उसने मिलते ही एलिन से माफी मांगी, कहा कि पिछली बार नगर स्वामी से मुलाकात के दौरान उसने उसे नाराज कर दिया था और वह ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आदेश था, वगैरह वगैरह। संक्षेप में उसने अपनी तारीफ के लिए बहुत कुछ कहा। बेशक एलिन ऐसी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ थी, आखिरकार एक व्यापारी के मुंह से इतनी आसानी से निकली बातों पर कोई कैसे यकीन कर सकता था। फिर भी उसने उसे इसके लिए डांटा नहीं। दरअसल उसने जियाशी के प्रति जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई बल्कि उसे गंभीरता से बात की। ओवरसियर जियाशी, सच कहूं तो पिछले लेन देन के बाद सिटी लॉर्ड बहुत असंतुष्ट हैं और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुझसे अनुरोध किया है कि मैं अन्य चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ सहयोग करूं, एलिन ने कहा, उनके चेहरे पर लाचारी की तस्वीर थी। तो अगर मैं और दादाजी नगरपाल के सामने आपकी ओर से दलील नहीं देते तो शायद ये सौदा कभी नहीं होता। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं सीनियर बॉस और मिस एलिन का बहुत आभारी हूँ, मैं इस उपकार को जरूर याद रखूंगा, लेकिन वर्तमान स्थिति के बारे में। अपने पहले एलिन की तरह जियाशी को भी उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने मौखिक रूप से उसकी हर बात पर सहमति जताई। चलो ऐसा करते हैं, मैं नगर प्रभु से बात करता हूँ। मानो उसने कोई बड़ा संकल्प लिया हो, एलिन बोलते हुए खड़ी हो गई और फिर जियाशी की ओर देखा, ओवरसियर जियाशी कृपया यहीं रुकिए, मैं अभी सिटी लॉर्ड से मिलने जा रही हूँ, लेकिन आप पिछली बार जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, अन्यथा मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा मिस एलिन, निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये देखकर कि एलिन तुरंत रॉकी से मिलने जा रही है, जियाशी ने झट से उसे धन्यवाद दिया और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। इस समय उसने और कुछ नहीं मांगा, बस ये लेन देन जल्द से जल्द पूरा हो जाए, यही उसकी बरकत होगी। एलिन से बात करने के बाद जियाशी ने विनम्रता और सम्मान के साथ उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ा और पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी अनुचित कार्य करने या अनुचित विचार मन में लाने का साहस नहीं किया। जियाशी, जो ऊपर से तो बहुत ही ईमानदार इंसान लग रहा था, ने पर्दे के पीछे कई धूर्त काम किए थे। हालांकि वह कोई ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी मूल इच्छाओं के वशीभूत हो। उसे पूरा एहसास था कि वह एलिन से मदद मांग रहा है, इसलिए उसने कोई भी गलत विचार या काम मन में लाने की हिम्मत नहीं की। कोई सोच सकता है कि क्या जियाशी बहुत अधिक सतर्क थी। चूंकि उसे पहले से ही पता था कि रॉकी जानबूझकर उससे बच रहा है, तो फिर वह थंडहॉक सिटी में क्यों रुका रहा? वह वहां से चला क्यों नहीं गया? यह विचार गलत नहीं था, लेकिन जियाशी ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, क्योंकि वह पहले ही जाने का अवसर खो चुका था। अगर वह थंडरहॉक सिटी पहुंचने के बाद पहले 3 दिनों में ही वहां से निकल जाना चाहता तो बातचीत विफल होने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा थंडरहॉक सिटी में रहने के बाद अगर वह निराश होकर वहां से चला जाता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। वह जो 5 जहाज अनाज लेकर आया था वह हवाई अड्डे पर मौसम की मार झेल रहा था। अगर वह अभी चला जाए तो यह अनाज किसे बेचेगा? यदि वह अनाज की यह खेप नहीं बेच सकता तो वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यह बात कैसे समझाएगा? तो ऐसा नहीं था कि जियाशी जाना नहीं चाहता था, बल्कि वो जा ही नहीं सकता था। उसे अनाज की ये खेप थंडरहॉक सिटी को बेचनी ही थी, वरना मुसीबत और भी बढ़ जाती। ऐसे में जियाशी को बस एलिन पर ही उम्मीद थी कि वह रॉकी को जल्दी से मना लेगी और सौदा जल्दी करवा लेगी ताकि वह जा सके। इसके अलावा जियाशी ने पहले ही तय कर लिया था कि एक बार यह सौदा पूरा हो जाए तो वह थंडरहॉक सिटी में फिर कभी न आने की कसम खाएगा। बहरहाल जब जियाशी बड़ी उत्सुकता से एलिन से खुशखबरी का इंतजार कर रही थी, गाड़ी लेकर एलिन सीधे अपनी ट्रेनिंग क्लास की ओर चल पड़ी। जियाशी की खातिर रॉकी को ढूंढने के लिए उसके पास समय नहीं था, उसे और भी कई काम निपटाने थे। प्रशिक्षण कक्षा 1 महीने से चल रही थी। एलिन नामांकित निवासियों की प्रगति देखने गई, जो सचमुच उसके दिल की चिंता का विषय था। दूसरी ओर सिटी लॉर्ड के महल में रॉकी अभी भी अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। उसके अथक प्रयासों के बाद इटर्नल सिटी से खरीदी गई 100 ढालें रूनिक ढालों में बदल दी गई थी और कवच के 100 टुकड़ों में से अधिकांश को भी रूनिक कवच में ढाल दिया गया था। इसका मतलब था कि रॉकी को इस बड़े काम को पूरा करने के लिए बस कवच के कुछ आखिरी टुकड़े बनाने थे। इस स्थिति में वे अत्यधिक प्रेरित थे तथा अत्यधिक थकान और कई दिनों तक बिना उचित आराम के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत जारी रखी। इस प्रमुख परियोजना के पूरा होते ही यह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाएगा। जल्द ही थंडरहॉक शहर के आधे से ज्यादा गार्ड नए रूनिक उपकरणों से लैस हो जाएंगे। मोटे के हालिया गहन प्रशिक्षण के साथ गार्ड कोर की ताकत में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसके साथ ही रॉकी उन्हें भाड़े के सैनिकों के संघ के मिशनों में ले जा सकेगा। रॉकी को ये करना ही था क्योंकि इसका सीधा संबंध थंडरहॉक सिटी के खजाने को फिर से भरने से था। केवल सुरक्षित धन के साथ ही वह विकास और योजना के अगले चरण में आगे बढ़ सकता था। इसलिए एलिन का उसके पास न आना ही सही था। रॉकी के पास जियाशी की मुश्किल से निपटने का समय नहीं था, उसका पूरा ध्यान रून उपकरण बनाने में था। 4 या 5 दिन बाद रॉकी ने अंततः अपने द्वारा खरीदे गए सभी उपकरणों पर रून अंकित कर दिए तथा इन नकली जादुई ऊर्जा उपकरणों को वास्तविक रून उपकरणों में बदल दिया। इस बड़े प्रोजेक्ट के सुचारू रूप से पूरा होने से रॉकी को राहत मिली। इतना कि कवच के आखिरी टुकड़े पर आखिरी रून बनाने के बाद वह अपने अध्ययन कक्ष में सो गया और पूरा दिन और रात सोता रहा। अगले दिन वह सिर्फ इसलिए उठा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, वरना वह और भी देर तक सो सकता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि रॉकी को इटर्नल सिटी से लौटे 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। इसका मतलब था कि वह 2 महीने से रून उपकरणों के बैच पर अकेले ही अथक परिश्रम कर रहा था और यही वजह है कि कवच का आखिरी टुकड़ा पूरा करते ही वह सो गया। हालांकि रॉकी के लिए अब आराम हमेशा एक विलासिता थी। थंडरहॉक सिटी के विकास की अभी शुरुआत ही हुई थी और उसके सामने ढेरों काम थे। इसलिए एक दिन आराम करने के बाद वह नए बने रून उपकरणों के साथ गार्ड कोर में चला गया। कड़ी मेहनत से तैयार किए गए ये उपकरण गार्डों के लिए थे, लेकिन थंडरहॉक सिटी की सीमित वित्तीय स्थिति के कारण केवल 100 गार्ड ही नए उपकरणों से लैस हो सके। इसका मतलब था कि थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर के केवल आधे ही नए उपकरण पहन पाए। रॉकी ने पहले से ही इस बारे में सोच विचार कर लिया था। दरअसल अगर उसने सिर्फ ढालें या सिर्फ कवच खरीदने का फैसला किया होता तो पूरे गार्ड कोर के लिए काफी होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रॉकी के विचार में केवल एक रून उपकरण से लैस रक्षकों की शक्ति में बहुत कम वृद्धि होगी। इसके बजाय उन्होंने कम लेकिन बेहतर की रणनीति को प्राथमिकता दी, जिससे कुछ चुनिंदा अधिक सक्षम रक्षकों को अधिक शक्तिशाली उपकरण पहनने की अनुमति मिल सके। यह विशिष्ट रणनीति अधिक प्रभावी साबित हुई। इसके अलावा हालांकि अधिकांश गार्ड कोर ने भाड़े के सैनिकों के संघ के कार्यों में भाग लिया, लेकिन प्रत्येक सदस्य को जी जान से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि थंडरहॉक सिटी में गार्ड कोर से अधिक लोग थे। इसके पास 10 स्काईशिप भी थे। आकाश जहाजों को चलाने के लिए पायलट की जरूरत होती थी और उन पर मौजूद जादुई तोपों को चलाने के लिए भी संचालकों की जरूरत होती थी। इसलिए आकाश जहाजों को चलाने और जादुई तोपों को चलाने के लिए कुछ पहरेदारों की जरूरत थी। इस वजह से रॉकी के साथ लड़ने के लिए जरूरी पहरेदारों की संख्या ज्यादा नहीं थी। इन पहरेदारों को हथियारबंद करने के लिए सिर्फ 100 उपकरणों की जरूरत थी। दरअसल पहरेदारों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। प्रशिक्षण के दौरान मोटे ने उन्हें बताया था कि नगर स्वामी ने शक्तिशाली जादुई ऊर्जा उपकरण का एक समूह हासिल कर लिया है, लेकिन केवल शीर्ष 100 पहरेदारों को ही यह उपकरण पहनने का विशेषाधिकार होगा। यही कारण था कि मोटे के कठिन प्रशिक्षण के तहत सभी पहरेदारों में जबरदस्त उत्साह था। हर किसी का लक्ष्य नगर स्वामी द्वारा तैयार किए गए जादुई ऊर्जा उपकरण प्राप्त करने वाले शीर्ष 100 में शामिल होना था। आज परेड ग्राउंड पर हमेशा की तरह प्रशिक्षण लेने के बजाय सैनिक सुव्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे, मानो वे निरीक्षण के लिए तैयार हों। दरअसल उनका निरीक्षण किया जा रहा था, क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि नगर स्वामी उनके प्रशिक्षण परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए जादुई ऊर्जा उपकरणों के 100 सेट लाएंगे। उनमें से सबसे उत्कृष्ट 100 व्यक्तियों को जादुई ऊर्जा कवच और मन कवच का पुरस्कार मिलेगा। उस समय रॉकी शून्य जादुई कवच पहने एक प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए गार्ड कोर के इन सदस्यों के सामने खड़ा था। उसके बगल में लिलिया और एलिन खड़ी थी, और यहां तक कि एलिन के दादा बॉस भी वहां मौजूद थे। इस निरीक्षण के लिए रॉकी ने इसे काफी गंभीरता से लिया। वह न सिर्फ पूरी सैन्य पोशाक में था, बल्कि थंडहॉक शहर के सभी प्रमुख लोगों को भी साथ लाया था। हालांकि यह सभा ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी ये शहर की सबसे भव्य सभा थी। इस दृश्य ने गार्डों को अत्यधिक तनाव में डाल दिया, क्योंकि उनकी नजर में चाहे वह रॉकी हो या लिलिया या यहां तक कि एलिन और बॉस, ये आकृतियां बहुत ऊंची और पहुंच से बाहर थीं। सभी इकाइयां ध्यान दें। जैसे ही पहरेदार बुरी तरह घबराए हुए थे, मोटे की आवाज अचानक गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। उसके आदेश का पालन करते हुए पूरी पहरेदार टुकड़ी तुरंत सीधी खड़ी हो गई, छाती बाहर और आंखें आगे। इसके तुरंत बाद साफ सुथरे कपड़े पहने मोटे दौड़कर दल के सामने पहुंचा और फिर जोर से रॉकी को पुकारा। नगरपाल, थंडहॉक नगर रक्षक दस्ता आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। नगरपालिका के निरीक्षण के लिए तैयार। जैसे ही मोटे के शब्द निकले, उसके पीछे खड़ा गार्ड दस्ता एक साथ गूंज उठा। उनकी गूंजती आवाजें तुरंत पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। इस दृश्य को देखकर रॉकी लगातार अपना सिर हिलाता रहा। गार्ड कोर की वास्तविक ताकत की तो बात ही छोड़ी, लेकिन उन्होंने जो मनोबल और जोश दिखाया वह पहले से ही तुलना से परे था। गार्ड कोर के मनोबल और उत्साह से रॉकी बहुत संतुष्ट हुआ, इसलिए वह भीड़ का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। मोटे की ओर सिर हिलाकर उसने गार्डों की ओर देखा। ऐसे समय में नगर प्रभु होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे कुछ शब्द बोलने ही थे। इसी वजह से रॉकी भी काफी घबराया हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी सैकड़ों लोगों को संबोधित नहीं किया था, यह उसके लिए पहली बार था। गार्ड कोर को देखते हुए वह सोच रहा था कि क्या कहे। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया में उसने खुद को बखूबी संभाला। अपनी छाती में तेज धड़कन के बावजूद अधिकार जताते हुए गार्डों को यह आभास दिया कि नगर स्वामी उन सबका जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद रॉकी ने बोलना शुरू किया। गार्डो, क्या आप जानते हैं कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ? करते हैं, रॉकी ने अपना वाक्य पूरा किया तो उसके सामने व्यवस्थित ढंग से खड़े गार्डों ने एक स्वर में जवाब दिया। बहुत अच्छा, इस जवाब के साथ रॉकी ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ घुमाकर लिलिया को संकेत दिया, जो तुरंत समझ गई और उसने अपने पीछे बक्सों की एक पंक्ति से एक रूनिक ढाल, नहीं एक जादुई ऊर्जा ढाल निकाली। ढाल को पकड़े हुए लिलिया रॉकी की ओर मुड़ी और उसे थोड़ा सा सिर हिलाते हुए देखकर उसने ढाल की जादुई ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। एक क्षण में लिलिया के हाथों में मौजूद ढाल से एक हल्की सी चमक निकली, जिससे वह साधारण ढाल असाधारण लगने लगी। इस दृश्य ने एकत्रित गार्डों में तुरंत ऊर्जा भर दी, उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। इन पहरेदारों के लिए मन हथियार खजाना माने जाते थे। अब तक न सिर्फ उन्हें इनका इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने असली जादुई ऊर्जा उपकरण भी नहीं देखे थे, और न ही उन्होंने कभी सोचा था कि वे इतने उच्च स्तरीय उपकरणों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए जब लिलिया ने रूनिक शील्ड, नहीं मैजिक एनर्जी शील्ड निकाली और उसकी शक्ति को सक्रिय किया, तो गार्ड रोमांचित क्यों न हुए। हालांकि सभी लोग जितने उत्साहित थे उतना ही वे ये भी जानते थे कि ये उपकरण हर किसी के लिए नहीं है। केवल उनमें से सबसे उत्कृष्ट लोगों को ही ये मिलेंगे, जिससे युद्ध के लिए अपनी तैयारी दिखाने का सभी का दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। और यह वही उत्साह था जो रॉकी देखना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि इस समय उनके द्वारा कही गई कोई भी बात वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करने से अधिक प्रभावी नहीं होगी, और वास्तव में परिणाम वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने अपेक्षा की थी, जिसने गार्डों को तुरंत प्रेरित कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना गला साफ किया और ऊंची आवाज में घोषणा की, आज मैं आपके प्रशिक्षण के परिणामों का परीक्षण करने के लिए एक मूल्यांकन करूंगा, और जो लोग मूल्यांकन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें 1-स्टार मैजिक एनर्जी शील्ड और 1-स्टार मैना कवच का एक टुकड़ा देकर पुरस्कृत किया जाएगा। क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है? स्पष्ट। जैसे ही रॉकी ने बोलना समाप्त किया, उसके सामने खड़े गार्डों ने अपनी छाती फुला ली और पूरे जोर से चिल्लाने लगे। बहुत अच्छा, इस भावना को बनाए रखें और मुझे मूल्यांकन में अपना वास्तविक प्रदर्शन दिखाएं। ये कहने के बाद रॉकी मोटे की ओर मुड़ा, जो तुरंत आगे बढ़ा और गार्डों को संबोधित करते हुए बोला, सभी लोग ध्यान दें, अब मैं मूल्यांकन का विवरण घोषित करूंगा। इस मूल्यांकन के बारे में रॉकी ने मोटे के साथ पहले ही चर्चा कर ली थी। इसकी विषय वस्तु सीधी सादी लड़ाई थी। पहरेदार जोड़ी बनाकर आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। केवल वास्तविक युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ही उपकरण दिए जाएंगे। यह आकलन भले ही आसान लगे, लेकिन पहरेदारों की ताकत का अंदाजा लगाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। आखिरकार ये लोग जल्द ही रॉकी के साथ भाड़े के सैनिकों के संघ के लिए काम करने जाएंगे और युद्ध में पूरी दक्षता जरूरी है। मोटे को गार्डों को मूल्यांकन के नियम समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि सभी को पहले से ही इसकी आशंका थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी और केवल असाधारण प्रदर्शन करने वालों को ही मन उपकरण मिल सकता है, तो उनके हाव भाव कुछ हद तक बदल गए। इसके बाद कुछ गार्ड और भी घबरा गए, कुछ के चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन कुछ ने पूरा आत्मविश्वास दिखाया। तनावग्रस्त होने की बजाय इन कुछ गार्डों ने अनजाने में ही अपने होठों पर मुस्कान ला दी, मानो वे कामयाब होने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हों। फिर मोटे इस मूल्यांकन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक बक्सा लेकर आया। उसमें कागज की पर्चियां थीं जिन पर गार्ड के नाम लिखे थे और मूल्यांकन की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कौन किसका सामना करेगा, ये पूरी तरह से लॉटरी से तय किया जाना था। महाराज कृपया, रॉकी को लॉटरी का डिब्बा देते हुए मोटे का स्पष्ट इरादा था कि मूल्यांकन के लिए पहली जोड़ी रॉकी ही बनाए। उस समय रॉकी को भी थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई और उसने तुरंत अपना हाथ बॉक्स में डाल दिया। काफी देर तक इधर उधर टटोलने के बाद उसने कागज की दो पर्चियां निकाली। लामिरो मारियो, पर्चियों पर नजर डालते हुए उसने उन पर लिखे नामों को जोर से पढ़ा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, गार्डों की निगाहें तेजी से उन दो व्यक्तियों पर टिक गईं, जो स्वाभाविक रूप से लामिरो और मारियो थे जिनके नाम पुकारे गए। दोनों की उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पहले चुना जाएगा। चाहे वो किस्मत हो या बदकिस्मती, दोनों थोड़े परेशान से लग रहे थे। घबराहट में उन्हें टीम से बाहर निकलने में काफी वक्त लगा। जल्दी करो, दिखाओ कि तुम्हारा प्रशिक्षण कितना अच्छा है और मुझे शर्मिंदा मत करो। शायद उनकी घबराहट को भांपते हुए मोटे ने उत्साहपूर्वक चिल्लाकर कहा, जब लामिरो और मारियो पंक्ति से बाहर निकलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। उसकी चीख भयंकर लग रही थी, लेकिन शायद प्रशिक्षण के दौरान उसकी ऊंची आवाज के आदि होने के कारण लामिरो और मारियो काफी हद तक शांत हो गए। फिर मोटे के आदेश के बाद उनकी लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई 10 मिनट से अधिक समय तक चली और अंततः मारियो ने लामिरो पर विजय प्राप्त की। हालांकि विजयी मारियो को जादुई ऊर्जा कवच और मन कवच नहीं मिला, क्योंकि जीत तो उसकी हुई थी, लेकिन दोनों ही लड़ाकों का प्रदर्शन सामान्य ही था। सीधे शब्दों में कहें तो अच्छे जोश के अलावा युद्ध में कोई खास पल नहीं था। इस प्रदर्शन ने न तो रॉकी लिलिया और न ही मोटे को खुश किया। विजेता मारियो और पराजित लामिरो दोनों ही अपने निराशाजनक प्रदर्शन से पूरी तरह वाकिफ थे। अत्यधिक घबराहट के कारण वे मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए, यहां तक कि प्रशिक्षण के दौरान दिखाई गई अपनी आधी ताकत भी नहीं दिखा पाए। यही उनकी समस्या थी, आखिरकार रॉकी काटने वाला तो है नहीं। अगर वे उसके सामने इतने घबराए हुए हैं कि ठीक से प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वे डेमन्स का सामना कैसे करेंगे? असली राक्षसों के खिलाफ औसत से ऊपर का प्रदर्शन भी किसी की जान बचाने के लिए काफी नहीं हो सकता। अगर उनका प्रदर्शन ही घटिया रहा तो वे बचने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो इन परिस्थितियों में न तो लामिरो और न ही मारियो को प्रतिष्ठित मन उपकरण प्राप्त हुआ। वे केवल निराश होकर अपने अपने स्थान पर लौट सके। जैसे ही वे फिर से सेना में शामिल हुए, सैनिकों में से कई लोगों को समझ आने लगी। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि यह मूल्यांकन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। माना उपकरण पाने के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था, उन्हें असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करना था, जिससे निस्संदेह मूल्यांकन की कठिनाई काफी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप माहौल और भी तनावपूर्ण और गमगीन हो गया। पहला मूल्यांकन समाप्त हो चुका था, लेकिन किसी भी भागीदार पक्ष को पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि किसी भी पक्ष के प्रदर्शन से रॉकी संतुष्ट नहीं था। इस परिणाम से निस्संदेह गार्डों को यह संदेश गया कि यह मूल्यांकन कोई बच्चों का खेल नहीं था, तथा इससे उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव काफी बढ़ गया। कुछ ही देर बाद दूसरा मूल्यांकन शुरू हुआ। हालांकि इस बार रॉकी की जगह मोटे ने लॉटरी निकालने का काम संभाला। 200 प्रतिभागियों का मूल्यांकन और जोड़ों का मिलान होने के कारण लॉटरी निकालने के 100 दौर हुए, जो एक श्रमसाध्य काम था और स्वाभाविक रूप से मोटे के जिम्मे था। जैसे ही मोटे ने दो गार्डों के नाम पुकारे, नामित जोड़ी लाइनअप से बाहर चली गई। कमान के स्तर पर दूसरा मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। संभवतः पहले मूल्यांकन के परिणाम ने गार्ड्स पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया था, क्योंकि दूसरे दौर में भाग लेने वालों का प्रदर्शन बेहतर नहीं बल्कि काफी खराब रहा। दूसरा मूल्यांकन पूरे 15 मिनट तक चला, जिसका अंत हास्यास्पद रूप से इस प्रकार हुआ कि लगभग आधे समय तक कोई भी पक्ष पहल करने का साहस नहीं कर सका, जिससे एक अत्यंत भद्दा दृश्य निर्मित हो गया। ऐसे परिदृश्य में जब अंततः विजेता घोषित किया गया, तो दोनों भाग लेने वाले गार्ड निराश होकर अपने अपने फॉर्मेशन में लौट गए। उन्हें अपने घटिया प्रदर्शन का स्पष्ट एहसास था, तथा वे जानते थे कि इस तरह के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें निश्चित रूप से मानव उपकरण प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें मन उपकरण देने से मना किया गया था। वास्तव में कई बाद के समूह मूल्यांकनों के बाद एक भी व्यक्ति को मन उपकरण नहीं मिला, और जैसे ही गार्ड्स का एक और जोड़ा निराश होकर अपनी कतारों में लौटा, पूरे समूह का मनोबल एकदम से गिर गया। जो पहले ऊर्जा से भरपूर थे, एक एक करके वे पंचर गेंदों की तरह सिकुड़ गए। यहां तक कि रॉकी के बगल में खड़ा मोटे भी इस समय नाराज दिखने लगा। मोटे ने मूल्यांकन की इस श्रृंखला को भी बहुत महत्व दिया, क्योंकि यह न केवल गार्ड्स के लिए बल्कि व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भी एक परीक्षा थी। अगर गार्ड्स अच्छा प्रदर्शन करते तो उनके प्रशिक्षक के रूप में उनकी साख सबसे ज्यादा होती, लेकिन अगर वे खराब प्रदर्शन करते तो यह निश्चित रूप से उनकी अक्षमता को दर्शाता। चूंकि उनके प्रशिक्षण के तरीकों में कोई दखल नहीं देता था, इसलिए मोटे के पास जिम्मेदारी से बचने का विकल्प भी नहीं था। इसलिए जैसे जैसे गार्ड्स का प्रदर्शन खराब होता गया, मोटे की अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती गई। सच कहूं तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। गार्ड्स ने ट्रेनिंग में अब तक जितना दिखाया था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रॉकी के सामने उनका प्रदर्शन इतना खराब होगा, और इस नतीजे से वह अचंभित रह गया। सौभाग्य से, हालांकि गार्ड्स खराब प्रदर्शन कर रहे थे, रॉकी नाराज नहीं हुआ। रॉकी को जरा भी नाराजगी नहीं हुई, क्योंकि वह समझता था कि गार्ड्स का इस तरह प्रदर्शन करना स्वाभाविक है। आखिरकार मोटे के पास उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए बहुत कम समय था। मोटे के उनके प्रशिक्षक बनने के पहले दिन से लेकर अब तक सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। इतने कम समय में गार्ड्स को उनके वर्तमान स्तर तक पहुंचाना उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए जब एक और समूह मूल्यांकन समाप्त हो गया तो रॉकी ने मोटे की ओर सिर हिलाया, जैसा उसने पहले किया था, जिससे संकेत मिला कि मोटे मूल्यांकन का अगला दौर शुरू कर सकता है। रॉकी के संकेत पर मोटे ने एक बार फिर लॉटरी निकालनी शुरू कर दी। हालांकि इस बार जब उसने कागज पर लिखे नाम देखे तो उसने चुपचाप राहत की सांस ली और फिर जोर से पुकारा, रॉबिन सैंड्रो। जैसे ही मोटे ने इन दो नामों को पुकारा, गार्ड कोर के हतोत्साहित रैंकों में अचानक हलचल मच गई तथा कई गार्ड उसी दिशा में देखने लगे। रॉकी का ध्यान स्वाभाविक रूप से इस ओर गया और उसने उत्सुकता से गार्ड्स की निगाहों का पीछा किया। तभी उसने एक युवक को उस टुकड़ी से बाहर निकलते देखा। वह युवक 20 वर्ष से कुछ अधिक का लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई विशेष आकर्षण नहीं था, लेकिन चेहरे की बनावट संतुलित थी और चेहरे पर कठोर भाव था, मानो वह मुस्कुराना नहीं जानता हो। जैसे ही वह दल से बाहर निकला, उसने तुरंत अपनी चौकोर ढाल को अपनी छाती के सामने रख लिया और ढाल के सामने एक लंबी तलवार कस ली तथा युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए थोड़ा झुक गया। क्या यह मुद्रा सही है? उस युवक की मुद्रा पर नजर डालने के बाद रॉकी ने सिर हिलाया। वह लड़ाकू मुद्रा एक सैनिक की विशिष्ट मुद्रा थी जिसे आम लोग आसानी से नहीं अपना पाते। उसका नाम सैंड्रो है, आज 21 साल का है। उसके दादा किसी दूसरे स्काई सिटी में सैनिक थे, इसलिए उन्होंने सैंड्रो को छोटी उम्र से ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। नतीजतन उसकी ताकत गार्ड कोर में सबसे बेहतरीन में से एक है, लिलिया ने रॉकी के पास चुपचाप समझाया, जो दिलचस्पी से देख रहा था। अच्छा, ऐसा है। लिलिया का स्पष्टीकरण सुनने के बाद रॉकी ने सिर हिलाया, सैंड्रो में उसकी रुचि बढ़ गई। इसके बाद रॉकी ने मोटे को देखा और रॉकी के संकेत पर मोटे ने तुरंत मूल्यांकन शुरू कर दिया। जैसे ही आकलन शुरू हुआ, ढाल और लंबी तलवार से लैस सैंड्रो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर कदम दर कदम बढ़ने लगा। उसकी गति तेज तो नहीं थी, लेकिन हर कदम मजबूत और खतरनाक था। साथ ही उसने अपनी ढाल को अपने सामने लगभग पूरी तरह से ढके हुए, केवल अपनी आंखें और तलवार की ठंडी धार को ही सामने रखा। इससे वह ऐसी स्थिति में रहता था जहां से वह किसी भी क्षण हमला कर सकता था या बचाव कर सकता था। 3-5 कदम की दूरी पर सैंड्रो अपने प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंच गया और लगातार दबाव के कारण उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था और वह वार करने को मजबूर हो गया। हालांकि इस तरह के बेताब हमले में स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं था। जब प्रतिद्वंद्वी ने अपनी लंबी तलवार नीचे की ओर घुमाई तो सैंड्रो ने उसे अपनी ढाल से आसानी से रोक लिया और लगभग उसी क्षण उसने अपनी लंबी तलवार आगे बढ़ा दी। ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी। घबराहट में सैंड्रो के प्रतिद्वंदी ने जल्दी से अपनी ढाल ऊपर उठाकर वार को रोका और बाल बाल बच गया। फिर सैंड्रो ने अचानक एक कदम आगे बढ़कर अपने प्रतिद्वंदी की ढाल को लात मार कर दूर फेंक दिया और उसके तुरंत बाद उसने अपनी ढाल को अपने प्रतिद्वंदी पर जोर से पटक दिया। एक धीमी सी आवाज गूंजी और सैंड्रो का प्रतिद्वंदी जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार मूल्यांकन समाप्त हो गया। किसी ने भी ऐसे निर्णायक परिणाम की उम्मीद नहीं की थी, इतना शीघ्र की यह लगभग अकल्पनीय था। फिर भी मुकाबला बेहद शानदार था। सैंड्रो ने अपने प्रतिद्वंदी को जबरदस्त ताकत से हरा दिया और इस मुकाबले को अपने निजी प्रदर्शन में बदल दिया, और यह सब उन्होंने बड़ी कुशलता से किया। इस शानदार मुकाबले ने रॉकी को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन इससे वह बेहद संतुष्ट भी हुआ। इसलिए बाद में उसने लिलिया की ओर देखा, जो सैंड्रो को पुरस्कृत करने के लिए तैयार मैजिक एनर्जी शील्ड और मैना आर्मर लाने के लिए तैयार थी। लेकिन ठीक उसी समय सैंड्रो का प्रतिद्वंद भी अचानक जमीन से उठा। उसके चेहरे पर एक अडिग भाव था और उसने रॉकी से चिल्लाकर कहा, सिटी लॉर्ड, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। सैंड्रो के प्रदर्शन ने न केवल सभी को संतुष्ट किया बल्कि सभी की अपेक्षाओं को भी पार कर गया, इस हद तक कि रॉकी भी उसकी जय जयकार करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी स्थिति में रॉकी ने स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की और मैजिक एनर्जी शील्ड और मैना आर्मर उसे सौंप दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण, इससे पहले कि रॉकी लिलिया से सैंड्रो को शून्य जादू कवच सौंप पाता, वह प्रतिद्वंद्वी जिसे सैंड्रो ने निर्णायक रूप से पराजित किया था अचानक जमीन से उछल पड़ा और रॉकी पर जोर से चिल्लाया, नगर के स्वामी, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। इस शोर ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और गार्ड कोर के कई लोग इसे सुनकर हंस पड़े। इस पल रॉकी ने स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान इस कंटीले आदमी की ओर मोड़ दिया। इससे पहले उसका ध्यान सैंड्रो पर था और उसने सैंड्रो के प्रतिद्वंद्वी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि सैंड्रो का प्रतिद्वंद्वी असल में एक नौजवान था, सिर्फ 17 या 18 साल का। उसका नाम रॉबिन है। वह आज केवल 18 वर्ष का है और हाल ही में गार्ड कोर में शामिल हुआ है। गार्ड कोर में 200 लोगों की एक सूची थी। हालांकि उनमें से हर कोई रॉकी को जानता था, रॉकी उन्हें पहचान नहीं पाया। इसलिए जब रॉकी ने जमीन से उछलते हुए उस नौजवान को देखा तो लिलिया ने उसके पास खड़ी होकर उसका सरल परिचय दिया। रॉबिन नाम का ये गार्ड सिर्फ 18 साल का था, जाहिर तौर पर एक भोला भाला और भ्रमित युवक। जमीन से उठने के बाद उसने हार नहीं मानी बल्कि वह उछल कूद कर रहा था। उसका युवा चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। नगर स्वामी, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं सचमुच अभी भी लड़ सकता हूँ। ये देखकर कि रॉकी केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा है और बोल नहीं रहा है, रॉबिन और भी अधिक चिंतित हो गया और चिल्लाता रहा। उसके उत्सुक व्यवहार को देखकर रॉकी ने हंसते हुए सैंड्रो की ओर देखा और फिर पूछा, सैंड्रो, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी सोचता है कि वह अभी भी लड़ सकता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कर सकता हूँ। सैंड्रो, जिसने अपनी तलवार और ढाल पहले ही रख दी थी, ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने बस जवाब दिया और फिर से अपनी ढाल और तलवार हाथ में लेकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार सैंड्रो और रॉबिन के बीच इसी मूल्यांकन का दूसरा मैच शुरू हुआ। सैंड्रो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी। अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए रॉबिन ने आक्रोश से भरकर सैंड्रो पर चिल्लाया और फिर बड़े कदमों से उस पर हमला कर दिया। वह 2 कदम से भी कम समय में सैंड्रो के पास पहुंच गया और तुरंत दोनों हाथों से अपनी तलवार उठाकर भयंकर वार करने लगा। 1 वार 2 हमले 3 प्रहार। रॉबिन ने अपनी बाहें घुमाकर 3 बार वार किया, लेकिन हर बार सैंड्रो की उठी हुई ढाल पर लगा। इतना ही नहीं, सैंड्रो, जो इन 3 वारों को झेल रहा था, हिला तक नहीं। ये नतीजा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रॉबिन में ताकत की कमी थी, दरअसल वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। दुर्भाग्य से सैंड्रो का बचाव बहुत मजबूत था। लगातार हमले का सामना करते हुए उसका बचाव एक पहाड़ी की तरह अडिग था और रॉबिन को कोई मौका नहीं दे रहा था। और रॉबिन के 3 वार के बाद सैंड्रो ने सीधे उसके घुटने पर लात मारी, जिससे रॉबिन तुरंत नीचे गिर गया। पहले की तरह दोनों के बीच दूसरे मुकाबले का फैसला होने में ज्यादा समय नहीं लगा और विजेता और हारने वाला नहीं बदला। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। फिर भी एक बार फिर नीचे गिराए जाने के बाद रॉबिन तुरंत उठ खड़ा हुआ और सैंड्रो की ओर फिर से बढ़ा। और इस तरह उनका संघर्ष शुरू हुआ। जैसा कि लिलिया ने बताया था, चूंकि रॉबिन हाल ही में गार्ड कोर में शामिल हुआ था और उसके पास कोई ठोस आधार नहीं था, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा लेवल 1 योद्धा ही माना जा सकता था। इतने दृढ़ संकल्प के बावजूद अफसोस की बात है कि उसके आधार और तकनीक दोनों में अभी भी काफी कमी थी। इसके विपरीत सैंड्रो बिल्कुल अलग था। हालांकि वह सिर्फ एक दूसरे दर्जे का योद्धा था, उसकी नींव मजबूत थी और वह रक्षा में बेहद कुशल था। उसके हाथों में ढाल एक मोटी दीवार की तरह थी जो हर हमले को नाकाम करने में सक्षम थी। ऐसी परिस्थितियों में उनके आदान प्रदान का परिणाम बहुत पूर्वानुमानित था। रॉबिन बस अभिभूत हो रहा था। फिर भी चाहे उसकी जिद हो या मूर्खता, रॉबिन, जो बार बार गिरता रहता था, एक अविनाशी तिलचट्टे जैसा लग रहा था, या एक वीबल जैसा जो कभी गिरता ही नहीं। लगातार गिरते रहने के बावजूद वह हमेशा वापस खड़ा हो जाता था। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, वह बार बार जमीन से उठता, हर बार अपना नारा बुलंद करता। हालांकि उसे फिर से जल्दी ही गिरा दिया गया, फिर भी उसने जोर से फिर से खड़े होने का अपना संकल्प जताया। एक क्षण के लिए पूरा मैदान एक ही आवाज से भर गया, एक ऐसी आवाज जिसने मानो जादू कर दिया हो, और अनायास ही सबकी निगाहें सैंड्रो से रॉबिन की ओर खींच ली। मैं अभी भी कर सकता हूँ। रॉबिन को एक बार फिर गिराने के बाद, इससे पहले कि वह फिर से खड़ा हो पाता, सैंड्रो ने सीधे अपनी तलवार की नोक से उसके माथे पर वार कर दिया। फिर धीरे से बोला, रॉबिन, तुम मुझे नहीं हरा सकते, आत्मसमर्पण कर दो। नहीं, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। अपने ऊपर रखी तलवार को अनदेखा करते हुए रॉबिन ने अचानक अपना सिर उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ दहाड़ते हुए बोला, मुझे नगर प्रभु का उपहार स्वरूप दिया गया उपकरण अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मैंने अपनी माँ से पहले ही वादा कर दिया है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वह अचानक आगे की ओर उछला और सैंड्रो की छाती से टकराया, जिससे सैंड्रो कई कदम पीछे हट गया और उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। रॉबिन के पिता की मृत्यु जल्दी हो गई और उनकी देखभाल के लिए केवल उनकी माँ ही बची रही। जैसे ही वे दोनों फिर से भिड़ गए, लिलिया ने रॉकी को समझाया। गार्ड कोर की कप्तान होने के नाते वह अपने गार्ड से अच्छी तरह परिचित थी। इसके बाद उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि रॉबिन की माँ की नज़र कमजोर है और वह बुनाई नहीं कर सकती। पूरा परिवार गार्ड कोर से मिलने वाली रॉबिन की आय पर निर्भर है। वह पहले दिन से ही कैप्टन बनने को लेकर बहुत शोर मचा रहा है, कह रहा है कि कैप्टन ज्यादा कमाते हैं और वह अपनी माँ को बेहतर जिंदगी दे सकता है। इस दुनिया में आम लोगों और रईसों की जिंदगी जमीन आसमान जितनी अलग होती है। मिसाल के तौर पर रॉकी को ही लीजिए, जो हमेशा पैसों की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन नगर स्वामी होने के नाते उसे कभी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ी। दरअसल अगर वह आज जितना जिद्दी न होता तो नगर स्वामी की तरह बेफिक्री से पूरी जिंदगी जी सकता था। लेकिन आम लोगों का जीवन एक जैसा नहीं है। उदाहरण के लिए थंडरहॉक सिटी के निवासियों को ही लीजिए। हालांकि थंडरहॉक सिटी सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक योजनाबद्ध आर्थिक मॉडल अपनाती है, फिर भी कुछ लोग विभिन्न कारणों से भारी कठिनाइयों में जी रहे हैं। रॉबिन ऐसा ही एक मामला है। तो यह ऐसा है, रॉकी को समझ आ गया जब उसने लिलिया के स्पष्टीकरण पर सिर हिलाया, फिर अपना ध्यान उन दो लड़ाकों की ओर लगाया जो अभी भी युद्ध में थे। जब तक लिलिया ने रॉकी को रॉबिन की स्थिति के बारे में बताना समाप्त किया, तब तक सैंड्रो और रॉबिन पहले से ही भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। सैंड्रो, जिसने बार बार रॉबिन को गिराया फिर भी जीत नहीं पाया, अब और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी, जबकि रॉबिन हमेशा की तरह बार बार जमीन से उठ रहा था और उसकी आंखों में और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। रुकना। हालांकि उसी समय रॉकी ने अचानक रुकने का आदेश दिया, जिससे दोनों, जो गंभीरता से लड़ रहे थे, ने अपना मुकाबला बंद कर दिया। दोनों लड़ाके रॉकी की ओर मुड़े, जो उनकी ओर आ रहा था। सैंड्रो, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर। मैं बहुत खुश हूँ, रॉकी ने सैंड्रो के पास जाकर कहा तथा उसे एक ढाल और कवच सौंप दिया, जिसे उसने स्वयं तैयार किया था। उनके शब्द सच्चे थे। सैंड्रो के प्रदर्शन ने वास्तव में रॉकी की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। धन्यवाद मेरे प्रभु। रॉकी से ढाल और कवच लेते हुए हमेशा गंभीर रहने वाला सैंड्रो अंततः मुस्कुराया और तुरंत उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। खड़े हो जाओ, रॉकी ने सैंड्रो को खड़े होने में मदद की और उसकी ओर सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र रॉबिन की ओर घुमाई, जो एक तरफ खड़ा था। रॉबिन, नगर स्वामी, मैं बस, मुझे पता है कि तुम अभी भी लड़ सकते हो, रॉकी ने सिर हिलाते हुए और प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम्हें जारी रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दृढ़ता ने पहले ही मेरा सम्मान अर्जित कर लिया है और मैं भी उतना ही संतुष्ट हूँ। ये कहकर रॉकी ने रॉबिन को एक ढाल और कवच का एक टुकड़ा दिया। धन्यवाद नगर स्वामी। ढाल और कवच प्राप्त करने पर रॉबिन खुशी से उछल पड़ा। कुछ देर तक वहीं उछलता रहा, फिर उसे रॉकी को धन्यवाद देना याद आया। इसके बाद दोनों जोश से भरे हुए अपनी जगह पर लौट आए। पल भर भी नहीं बीता था कि ईर्ष्या भरी निगाहों ने उन्हें घेर लिया। इतनी लंबी जांच प्रक्रिया के बाद जादुई ऊर्जा उपकरण पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इन दोनों की सफलता ने बाकी गार्ड्स को भी काफी प्रोत्साहित किया। पिछले राउंड में खराब प्रदर्शन के कारण जिन गार्ड्स का मनोबल गिरा हुआ था, वे सैंड्रो और रॉबिन की सफलता देखकर फिर से उत्साहित हो गए। एक बार फिर से उत्साहित और उत्साहित होकर प्रतिभागियों ने बाद के मूल्यांकनों में अपना सामान्य प्रदर्शन पुनः प्राप्त कर लिया। शायद रॉबिन से प्रेरित होकर प्रत्येक गार्ड नए दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरा, जिससे प्रतियोगिता और भी रोमांचक हो गई। इन परिस्थितियों में रॉकी द्वारा लाए गए उपकरण अंततः एक एक करके वितरित किए गए और इस तरह मूल्यांकन एक के बाद एक दौर चलता रहा और जल्द ही शाम हो गई। जैसे जैसे आसमान धीरे धीरे काला होता गया, मूल्यांकन आखिरकार समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। आखिरी राउंड खत्म होने पर रॉकी द्वारा लाए गए लगभग सभी 100 सेट उपकरण गार्डों को दे दिए गए थे। हालांकि सभी का हिसाब नहीं था, एक सेट अंत तक वितरित नहीं किया गया था, बाकी सेट स्वाभाविक रूप से नहीं रखा जाने वाला था। इसलिए जब सभी का मूल्यांकन पूरा हो गया तो मोटे ने उन गार्डों से कहा जिन्हें उपकरण नहीं मिले थे, आप में से कौन इस उपकरण के सेट के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहेगा। ये सुनकर कि प्रतिस्पर्धा करने का अभी भी मौका है, मूल्यांकन में असफल रहे गार्ड उत्साहित हो गए और अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक हो गए। नगर के स्वामी, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अचानक एक तेज चीख गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि आवाज गार्ड कोर के किसी सदस्य की नहीं थी। जैसे ही सब लोग स्रोत का पता लगाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि एक युवा मादा बीस्टमैन दूर से रॉकी को हाथ हिला रही थी और हाथ हिलाते हुए समूह की ओर दौड़ रही थी। क्या ये दुसा नहीं है? पहली नजर में ही युवा मादा बीस्टमैन को पहचान कर रॉकी ने उसे पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि मोटे की बेटी थी। दूसा को पहचानते ही रॉकी ने मोटे की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। लेकिन तब तक दूसा दौड़कर आ चुका था और पूरे उत्साह के साथ उसने रॉकी से पूछा, नगरपाल, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? दूसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परेशानी पैदा करना बंद करो। अपनी बेटी को सचमुच आते देख मोटे का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने गुस्से में उसे डांटा। लेकिन अपने पिता की डांट सुनकर दूसा कुछ डरी हुई होने के बावजूद जिद पर अड़ी रही। उसने अपने पिता की तरफ नहीं देखा, उसकी आंखें उत्सुकता से रॉकी की तरफ देख रही थीं। यह अब रॉकी मुश्किल में पड़ गया। उसे जाहिर तौर पर अंदाजा हो गया था कि मोटे उसकी बेटी को नहीं आने देना चाहता। ये बात उसके गुस्से से लाल चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि दूसा की उत्सुकता के कारण रॉकी के लिए मना करना मुश्किल हो रहा था। इस प्रकार दुविधा में फंसे रॉकी के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसा, तुम क्या कर सकते हो? मैं तीर चला सकता हूँ, मैं तीर चला सकता हूँ। रॉकी के पूछने पर दूसा ने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे कोई छात्रा शिक्षक के प्रश्न का उत्तर दे रही हो। तभी रॉकी ने देखा कि दूसा सचमुच एक लंबा धनुष और एक तरकश लेकर आई थी। वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। दूसा को पूरी तरह सुसज्जित देखकर रॉकी को एहसास हुआ कि उसकी यहाँ उपस्थिति कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी, अन्यथा वह इतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह मोटे को बस एक नज़र ही देख पाया। तभी मोटे ने झट से कहा, नगरपाल, आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसा तो बस परेशानी खड़ी कर रही है। पिताजी, मैं कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कम से कम उनसे तो ज़्यादा। मोटे ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि दूसा ने दुखी होकर उसे बीच में ही टोक दिया। फिर असंतुष्ट होकर रॉकी की ओर मुड़ा और बोला, नगरपाल, मैं बहुत ही दुर्जेय हूँ, इनमें से कोई भी रक्षक मुझसे बेहतर नहीं हो सकता, कृपया मुझे कोशिश करने दीजिए। दूसा, परेशानी खड़ी करना बंद करो और घर जाओ, मैं कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा हूँ। पिता और बेटी को यूं बहस करते देख रॉकी अनिच्छा से दोनों के बीच आ गया। बस अब बहस। अपनी बहस को रोकने के बाद उसने दूसा की ओर देखा और जब उसने उसे अपनी ओर देखते देखा तो उसका फूला हुआ क्रोधित चेहरा तुरंत चमक उठा। दूसा, क्या तुम्हें जादुई ऊर्जा उपकरण का यह आखिरी सेट चाहिए? हाँ, आपको यह उपकरण किस लिए चाहिए? मैं अपने पिता के साथ लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। रॉकी के सवालों का दूसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वह नए उपकरण पहनकर अपने पिता के साथ लड़ना चाहती थी। दूसा का असली इरादा यही था, क्योंकि बीस्टमैन चाहे किसी भी लिंग के हों, स्वाभाविक योद्धा होते हैं। उनमें न सिर्फ युद्ध की जन्मजात क्षमताएं होती हैं, बल्कि उनकी हड्डियों में भी युद्ध की गहरी लालसा होती है। हालांकि मोटे और दूसा के बीच संघर्ष यहीं पर हुआ। मोटे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का अंत भी उसके जैसा हो। वह बस यही चाहता था कि उसकी जिंदगी शांतिपूर्ण रहे, इसलिए उसने उसे कभी अपने मामलों में शामिल नहीं किया। फिर भी दूसा एक विशिष्ट बीस्टमैन थी जो अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में जाने के लिए स्वाभाविक रूप से तरसती थी, ठीक वैसे ही जैसे मोटे तब करता था जब वह एक दानव शिकारी था और अब भी करता है। इस मुद्दे पर अक्सर पिता और बेटी के बीच झगड़े होते थे। तो ये बात है। दूसा के सीधे जवाब का सामना करते हुए रॉकी ने केवल मुस्कुराया और फिर कहा, दूसा, मैं तुम्हें कोशिश करने की अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोई भी जादुई ऊर्जा उपकरण प्राप्त करता है उसे निश्चित रूप से वास्तविक कौशल की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास वह आत्मविश्वास है? हाँ। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रॉकी की ओर देखते हुए दूसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। ठीक है। इतना कहने के बाद रॉकी ने लापरवाही से जमीन से एक पत्थर उठाया जो मुट्ठी के आकार का था, उसे अपने हाथ में तौला और फिर दूसा की ओर देखा। दूसा, यदि तुम एक तीर से इस पत्थर को मार सकते हो तो मैं तुम्हें जादुई ऊर्जा उपकरण का अंतिम सेट दूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, रॉकी ने पत्थर हवा में फेंक दिया। यही सबसे अच्छा उपाय था जो वह सोच सकता था। मोटे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी खतरे में पड़े या उसके मामलों में दखल दे, और रॉकी उसकी इच्छा का विरोध तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए उसने दूसा के सामने यह मुश्किल चुनौती रख दी। अंधेरा हो चुका था और उसने जो पत्थर हवा में फेंका था वह मुट्ठी भर का ही था। कमजोर नजर वाले लोग उसे साफ देख भी नहीं सकते थे। तीर से मारना तो दूर की बात थी। इस तरह हालांकि दूसा असफल हो जाती, लेकिन वह अपने पिता को मौका न देने के लिए दोषी नहीं ठहराती। ये हर लिहाज से एकदम सही उपाय था, कम से कम रॉकी को तो यही लगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्षण उसने पत्थर फेंका, दूसा ने तुरंत अपनी पीठ से लंबा धनुष उठाया, उसे मोड़ा, एक तीर लगाया और एक झटके के साथ उसे छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी क्योंकि भागा हुआ तीर सबके सामने एक चाप बनाता हुआ चला गया और फिर एक झटके के साथ वह हवा में ही पत्थर से टकराया। एक क्षण में ही सारा स्थान शांत हो गया। क्या ये संभव है? ये देखकर कि जूसा ने एक ही तीर से पत्थर पर निशाना साधा, रॉकी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुसा में इतनी कुशलता होगी। दुसा की तीरंदाजी इतनी शानदार थी। मारो मारो नगर के स्वामी, क्या मैं महान हूँ? जबकि हर कोई दुसा की उत्कृष्ट तीरंदाजी को देखकर दंग रह गया, दुसा स्वयं एक मैगपाई की तरह खुशी से झूम रही थी। उसने रॉकी के बोलने का भी इंतजार नहीं किया और फिर लिलिया की ओर दौड़ी और जादुई ऊर्जा उपकरणों का अंतिम सेट छीन लिया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गार्ड कोर का रॉकी का निरीक्षण दुसा द्वारा उपकरणों का अंतिम सेट ले जाने के साथ समाप्त होगा। बहरहाल, ये निरीक्षण स्पष्ट रूप से सफल रहा। रॉकी ने न केवल गार्डों को व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए 100 उपकरणों के सेट सौंपे, बल्कि उन्होंने इस दौरान गार्ड कोर की प्रशिक्षण उपलब्धियों को भी देखा। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद गार्ड्स की ताकत काफी बढ़ गई थी। सैंड्रो और रॉबिन जैसे उल्लेखनीय खिलाड़ी उभर कर सामने आए थे, जो रॉकी के लिए निश्चित रूप से खुशी की बात थी, क्योंकि ये खिलाड़ी भविष्य में रॉकी और थंडरहॉक सिटी की रीढ़ बन सकते थे। बेशक दूसा का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से आनंददायक था। उसकी तीरंदाजी ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया और मोटे भी अपनी बेटी की इस क्षमता से अनजान था, जिससे रॉकी की उसकी प्रतिभा में स्वाभाविक रूप से रुचि पैदा हुई। हालांकि वह इस मामले में जल्दबाजी में नहीं था। वास्तव में यदि मोटे अपनी बेटी को उसके साथ जाने देने के लिए तैयार नहीं था तो रॉकी निश्चित रूप से आग्रह नहीं करेगा। इसके अलावा आज की समीक्षा के बाद रॉकी को अब गार्ड कोर की ताकत की पूरी समझ हो गई थी। ये समझ उसके लिए बहुत जरूरी और जरूरी थी, क्योंकि जल्द ही उसे इन गार्ड्स का नेतृत्व करके भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना था। हाँ, रॉकी ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था, इसलिए अब भाड़े के सैनिकों के संग से कार्य स्वीकार करने का समय आ गया था। अब थंडरहॉक शहर में खाद्यान्न की समस्या हल हो गई थी और खजाने में कुछ अतिरिक्त धन जमा हो गया था, जो कम से कम अगले धागे की खेप खरीदने के लिए पर्याप्त था। 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद गार्ड कोर शारीरिक और उपकरण दोनों ही दृष्टि से पूरी तरह तैयार हो गया था। आखिरकार रॉकी अपनी योजना के अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कर सका। उनकी अगली योजना स्वाभाविक रूप से भाड़े के सैनिकों के संग से मिशन प्राप्त करने की थी। 2 महीने पहले इटर्नल सिटी से लौटने के बाद से वह इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और अब अंततः भाड़े के सैनिकों के समूह से मिशन लेने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था। इसलिए सिटी लॉर्ड के भवन में लौटने के बाद रॉकी तुरंत सोने नहीं गया, बल्कि उत्सुकता से मिशन रिसीवर निकाल लिया। यह मिशन रिसीवर, जिसे उसने भाड़े के सैनिकों के संघ से 500 स्वर्ण सिक्कों में खरीदा था, उसे भाड़े के सैनिकों के संघ के सभी मिशनों की आसानी से समीक्षा करने और मिशन प्राप्त करने के लिए उनसे सीधे संपर्क करने की अनुमति देता था। मिशन रिसीवर बड़ा नहीं था, लगभग हथेली के आकार का और एक जादुई पत्थर से जड़े हुए बर्तन जैसा दिखता था, जिसमें कई बटन लगे थे। जब रॉकी ने उसे चालू किया तो उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली और उसकी आंखों के ठीक सामने एक छवि में बदल गई। धिक्कार है, इससे मैं डर गया। रिसीवर से प्रक्षेपित छवि को देखकर चौंके रॉकी को तुरंत एक शब्द याद आया जो इस दुनिया से बाहर का था, होलोग्राफिक प्रक्षेपण। यह मिशन रिसीवर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्ट की तरह था। जब उन्होंने छवि को और करीब से देखा तो उन्हें मिशन से संबंधित जानकारी की पंक्तियां दिखाई दी। रॉकी की रुचि जागृत हुई और उसने जल्दी से एक संदेश को चुन लिया तथा रिसीवर पर बटन दबाकर विवरण को ध्यान से पढ़ा। प्रकार: व्यापारी जहाज अनुरक्षण। आवश्यकता: 10 से अधिक लोगों का 1-0 जादू दस्ता। अवधि: 3 दिन। मिशन का उद्देश्य: बेली शहर से व्यापारी जहाज के साथ 120 शहर तक पहुंचना और उसे पुनः आपूर्ति के लिए जमीन पर रुकना। व्यापारी जहाज के अपने गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने पर मिशन पूरा हो जाता है। कमीशन: 30,000 स्वर्ण सिक्के। मिशन जारीकर्ता: गुना गुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भाड़े के सैनिकों के समूह के अंदर बुलेटिन बोर्ड के विपरीत मिशन रिसीवर पर प्रदर्शित कार्य संबंधी जानकारी बहुत विस्तृत, एक नज़र में स्पष्ट और बहुत सुविधाजनक थी। जब रॉकी ने यादृच्छिक रूप से चुने गए कार्य की विस्तृत जानकारी देखी तो वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं सका। वाह, 3 दिन के एस्कॉर्ट मिशन से 30,000 सोने के सिक्के कमाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे आश्चर्य है कि जारीकर्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस प्रकार का मूल्यवान सामान इतनी ऊंची कीमत पर 0 जादू दस्ते को किराए पर देने के लिए परिवहन कर रहा है। यद्यपि मिशन के उच्चायुक्त से आश्चर्यचकित होकर रॉकी ने तुरंत अन्य जानकारी प्राप्त कर ली, क्योंकि वह इस मिशन पर नहीं जा सकता था। कुछ ही देर बाद एक और जानकारी ने उनका ध्यान खींचा। प्रकार: राक्षसों का विनाश। आवश्यकता: 100 से अधिक लोगों का भाड़े का समूह। अवधि: मिशन का उद्देश्य जियालिन पर्वत श्रृंखला में मिंगमा कॉमर्स गिल्ड के स्वामित्व वाले वन फार्म की ओर जाएं और वहां के राक्षसों का सफाया करें। राक्षसों की अनुमानित संख्या 30 से ज्यादा है, विशिष्ट प्रकार अज्ञात हैं, कोई उच्च स्तरीय राक्षस नहीं है और सभी राक्षसों के सफाई के बाद मिशन पूरा होगा। कमीशन: 40,000 स्वर्ण सिक्के। मिशन जारी करता मेंगमा कॉमर्स गिल्ड। पिछले एस्कॉर्ट मिशन के विपरीत रॉकी का ध्यान एक विनाश मिशन की ओर आकर्षित हुआ और इस कार्य के लिए कमीशन बहुत अधिक था, कुल 40,000 स्वर्ण सिक्के। इसके अलावा इस मिशन की आवश्यकताएं रॉकी की क्षमताओं से पूरी तरह मेल खाती थी, यहां तक कि उनसे भी अधिक थी, जिसका अर्थ था कि वह निश्चित रूप से इस मिशन को पूरा कर सकता था। लेकिन रॉकी ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि मिशन की जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि हालांकि मिशन का काम बहुत बड़ा था, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी था। मिशन का उद्देश्य जंगल के खेत पर कब्जा जमाए राक्षसों का सफाया करना था और जानकारी के अनुसार अंदर राक्षसों की संख्या 30 से ज्यादा थी। ये संख्या थोड़ी ज्यादा थी, 30 राक्षस। हालांकि रॉकी ने इससे पहले राक्षसों के साथ बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन वह जानता था कि राक्षसों की इतनी बड़ी संख्या और पैमाने का सामना केवल एक शून्य जादू दस्ते द्वारा ही किया जा सकता है। साधारण सैनिक, 100 से अधिक लोगों के भाड़े के समूह की बात तो दूर, यहां तक कि 500 लोगों का भाड़े का समूह भी उनसे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता। तो इस काम के लिए बहुत ज्यादा कमीशन मिलने के बावजूद रॉकी दांव पर लगे पैसों से अंधा नहीं हुआ। वह काम पूरा करके पैसा कमाना तो चाहता था, लेकिन इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसके अलावा ठीक इसी कारण कि उसने अपनी तर्कसंगतता बनाए रखी, रॉकी जितना अधिक इस कार्य को देखता यह उसे उतना ही अधिक अजीब लगता। अगर इस काम को पूरा करने के लिए कम से कम 30 राक्षसों का सफाया करना जरूरी था, तो मिंगमा कॉमर्स गिल्ड को 100 से ज्यादा लोगों का भाड़े का समूह क्यों नियुक्त करना पड़ा? आपको पता होना चाहिए कि वे जो कमीशन दे रहे थे वह 40,000 स्वर्ण मुद्राओं का था, जो 500 से ज्यादा सदस्यों वाले भाड़े के समूह के लिए भी पर्याप्त राशि थी। ये सचमुच अजीब है, रॉकी सिर हिलाते हुए, हालांकि उसे जवाब नहीं सूझा, फिर भी उसे लगा कि मेंगमा कॉमर्स गिल्ड द्वारा दिया गया काम उसके उच्च पद के बावजूद बहुत खतरनाक था और उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। यह ऐसा काम था जिसे वह स्वीकार नहीं करेगा। सौभाग्य से भाड़े के सैनिकों के संघ में कई कार्य उपलब्ध थे और चुनने के लिए ढेरों विकल्प उपलब्ध थे, इसलिए भले ही यह विशेष कार्य उपयुक्त न हो, फिर भी विचार करने के लिए अन्य कार्य उपलब्ध थे। इस तरह रॉकी ने जल्द ही एक के बाद एक विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी और उनमें से जो उसकी रुचि के थे उन्हें नोट कर लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने शाम का अधिकांश समय उसे ढूंढने में बिता दिया और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक लगभग बोर हो चुकी थी। अगले दिन उसने लिलिया, एलिन और मोटे को अपने कमरे में बुलाया। भाड़े के सैनिकों के समूह से मिले काम तो लेने ही थे, लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे नहीं लिया जा सकता था, वरना वह अपना सब कुछ खर्च कर सकता था, जो रॉकी नहीं चाहता था। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें समूह में बैठकर यह तय करना था कि कौन सा काम लेना है। सबके आ जाने के बाद रॉकी ने टास्क रिसीवर निकाला और सबको पिछली रात चुने गए टास्क दिखाए। उसका मानना था कि ये टास्क उनकी क्षमता के भीतर हैं, लेकिन असल में कौन सा टास्क लेना है ये तय करने के लिए सभी की राय जरूरी थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने उस उन्मूलन कार्य को फिर से उठाया, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि इसमें कुछ अजीब बात है। इस काम को देखो, उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हें मुश्किल नहीं लगता? मुझे तो बस इसमें कुछ अजीब लग रहा है, विनाश कार्य की विस्तृत जानकारी देने के बाद रॉकी बोला। पूछे जाने पर लिलिया, एलिन और मोटे सभी ने कार्य संबंधी जानकारी की ओर देखा। महाराज, क्या आपको इस विनाश कार्य की आवश्यकताएं समस्यापूर्ण लगती हैं? एलिन सबसे पहले बोली, उसने बस एक झलक भर उस पर नजर डाली। रॉकी के लिए ये कुछ अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने सोचा कि शायद लिलिया या मोटे सबसे पहले कुछ गड़बड़ को नोटिस करेंगे, लेकिन उसने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेंगमा कॉमर्स गिल्ड 40,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके सिर्फ 100 से ज्यादा सदस्यों वाले भाड़े के सैनिकों को ही क्यों नियुक्त करता है। तार्किक रूप से इतनी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए कम से कम 500 सदस्यों के समूह की जरूरत होगी, आप जानते हैं। मेंगमा कॉमर्स गिल्ड ने ये जानबूझकर किया। रॉकी अपनी शंकाओं को व्यक्त कर पाता उससे पहले ही एलिन के पास उसका जवाब था और उसने आगे कहा, मेंगमा कॉमर्स गिल्ड ने कार्य की आवश्यकताओं को इतना कम इसलिए रखा है ताकि वे उन भाड़े के सैनिकों को आकर्षित कर सकें जिनकी क्षमताएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं, लेकिन वे धन की संभावना से अंधे हो गए हैं। क्योंकि यदि अपर्याप्त शक्ति वाला कोई भाड़े का समूह इस कार्य को करता है, भले ही वे इसे पूरा न कर सकें, फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूप से इसकी कठिनाई को कम कर सकते हैं। आखिरकार 100 से अधिक का समूह सभी 30 राक्षसों को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन संभवतः कम से कम एक या दो को मार सकता है ना? लेकिन अगर सिर्फ एक या दो राक्षस मारे जाते हैं तो मेंगमा कॉमर्स गिल्ड निश्चित रूप से कमीशन नहीं देगा, फिर भी कार्य की कठिनाई कम हो जाएगी। फिर मेंगमा कॉमर्स गिल्ड तुरंत कमीशन कम कर सकता है और आवश्यकताएं बढ़ा सकता है, जिससे एक सक्षम भाड़े का समूह कार्य को जल्दी पूरा कर सकता है। ये तरीका उन्हें बिना किसी नुकसान की स्थिति की गारंटी देता है, एलिन ने समझाया। कुछ ही शब्दों में एलिन ने रॉकी के सभी संदेहों को स्पष्ट रूप से समझा दिया, जिससे वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह किया जा सकता है। एलिन के स्पष्टीकरण के बाद रॉकी को अपना संयम वापस पाने में काफी समय लगा, जिसके बाद वह भौचक्का रह गया। हालांकि उसे लगा था कि यह विनाशकारी संदिग्ध है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसमें इतने सारे पेंच हैं और मिंगमा कॉमर्स गिल्ड की रणनीति पूरी तरह से कुटिल थी। रॉकी के विचारों को समझते हुए एलिन ने कहा, महाराज, ये व्यापारियों की छोटी मोटी चालें हैं, बिल्कुल सामान्य। हमें बस ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जब रॉकी को लगा कि मिंगमा कॉमर्स गिल्ड बहुत चालाक है, तो एलिन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। याद रखें, एलिन भी एक व्यापारी थी। एक व्यापारी के लिए मुनाफा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। खर्च कम करते हुए अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसी छोटी छोटी तरकीबें कोई मायने नहीं रखती। इसके अलावा, हालांकि यह काम चालाक ही भरा लग रहा था, लेकिन ये स्वयंसेवकों पर ही निर्भर था। अगर वे भाड़े के सैनिक समूह, जिनमें स्पष्ट रूप से कमजोर ताकत थी, लेकिन जो धन कमाने की उम्मीद कर रहे थे, नष्ट हो गए, तो वे किसे दोष देंगे? इसलिए एलिन के लिए ऐसी तरकीबें कुछ खास नहीं थीं। एलिन की बातें सुनकर रॉकी इसे स्वीकार करने में हिचकिचाते हुए भी सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह मन ही मन खुद को खुशकिस्मत भी मानता था कि सभी को एक साथ बुलाकर इस पर चर्चा करना सही कदम था, क्योंकि जाहिर है, भाड़े के सैनिकों के समूह के कामों में जो आसान लगता था, उसमें अक्सर कई पेचीदगियां छिपी होती थीं, एक गलती अनजाने में दूसरों को फायदा पहुंचा सकती थी। इसके बाद उन्होंने उन कार्यों को सामने रखा जिन्हें उन्होंने एक दिन पहले चुना था, तथा सभी के साथ चर्चा की कि उन्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। रात का अधिकांश समय चयन में बिताने के बाद रॉकी ने दर्जनों कार्य संबंधी जानकारी देखी और अंततः उनमें से तीन को चुना। उनका मानना था कि ये तीनों कार्य विभिन्न पहलुओं से उनके लिए उपयुक्त थे, इसलिए लिलिया और अन्य लोगों के एकत्र होने के बाद उन्होंने इन तीनों कार्यों के लिए विस्तृत जानकारी जुटाई। रॉकी द्वारा चुना गया पहला कार्य एस्कॉर्ट मिशन था। प्रकार, एस्कॉर्ट कारवां। आवश्यकता, 100 से अधिक का भाड़े का समूह। अवधि, 7 दिन। कार्य का उद्देश्य, डीप वैली माइन से कारवां को एस्कॉर्ट करना, डीप गॉज कैनियन से होते हुए ग्रेट ड्रॉट हाईलैंड्स तक पूरी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा करना और स्काईशिप पिकअप का इंतजार करना। स्काईशिप द्वारा माल का परिवहन पूरा करने के बाद ये कार्य पूरा हो जाता है। कमीशन, 10,000 स्वर्ण सिक्के। पोस्टकर्ता, ब्रेक कॉमर्स। रॉकी को लगा कि यह एस्कॉर्ट मिशन शुरुआत के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, और दूसरी बात, कमीशन भी काफी अच्छा था। और विवरण से उसे लगा कि इसमें कोई खास खतरा नहीं था। गार्ड कोर का नेतृत्व करते हुए और 10 स्काईशिप जोड़कर इस मिशन को पूरा करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। दूसरा कार्य जो उन्होंने चुना वह राक्षस उन्मूलन मिशन था। प्रकार, दानव विनाश। आवश्यकता, 200 से अधिक का भाड़े का समूह जिनके पास तैरते हुए युद्धपोत हो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अवधि, कार्य का उद्देश्य, राइन मैदानों से राक्षसों को खत्म करना, कार्य पूरा करने के लिए कम से कम 20 राक्षसों को मारना। कमीशन, 5,000 स्वर्ण सिक्के, युद्ध की लूट भाड़े के सैनिकों के समूह की है। पोस्टकर्ता, लिब्रा सिटी। रॉकी को इस मिशन में मुख्यतः उच्चायुक्ति के कारण रुचि थी। हालांकि यह केवल 5,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, युद्ध की लूट भाड़े के सैनिकों के समूह की थी। चूंकि यह एक राक्षस विनाश मिशन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लूट का माल मारे गए राक्षस ही थे। इस हिसाब से मिशन का कमीशन मात्र 5,000 स्वर्ण सिक्कों से कहीं ज्यादा था, क्योंकि मिशन पूरा होने के लिए कम से कम 20 राक्षसों को मारना जरूरी था। इसका मतलब था कि रॉकी न सिर्फ 5,000 स्वर्ण सिक्के कमा सकता था, बल्कि कम से कम 20 राक्षस लाशें भी कमा सकता था। और यदि वह इन राक्षस शवों को बेचे, भले ही प्रत्येक शव 1,000 स्वर्ण सिक्कों के मूल्य पर बिके, तो वह कम से कम 20,000 स्वर्ण सिक्के कमा सकता था। इस उदार इनाम ने रॉकी को सचमुच लुभाया, इसलिए उसने यह मिशन जारी रखा। तीसरा कार्य जो उन्होंने चुना वह समन्वित रक्षा मिशन था। प्रकार, समन्वित रक्षा। आवश्यकता, 100 से अधिक का भाड़े का समूह। अवधि, 30 दिन। कार्य का उद्देश्य, खनन चौकी की सहयोगात्मक रूप से रक्षा करना, एक साथ दानवों के हमलों का सामना करना, तथा कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों तक सफलतापूर्वक रक्षा करना। कमीशन, 10,000 स्वर्ण सिक्के, युद्ध में लूटे गए माल भाड़े के सैनिक समूह के हैं, 500 किलोग्राम पीला स्केल एस्क। पोस्टकर्ता, द फॉस्किन पीपल। सच कहूं तो रॉकी द्वारा चुना गया आखिरी टास्क एक फिलर था, क्योंकि उच्च कमीशन के अलावा कई बातें उसे समझ नहीं आईं, जैसे कि टास्क पोस्ट करने वाले द फॉस्किन पीपल का स्वभाव। हालांकि कमीशन वाकई बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने उसे रख लिया। इसके बाद लिलिया और अन्य लोगों को उपरोक्त तीनों कार्यों की विस्तृत जानकारी की गहन समीक्षा करने में अधिक समय नहीं लगा। फिर उन्होंने अपनी नजर रॉकी पर डाली। आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा कार्य उपयुक्त लगता है? ये देखकर कि तीनों ने सभी कार्य संबंधी जानकारी की समीक्षा पूरी कर ली है, रॉकी ने जल्दी से पूछा। महाराज, पहला कार्य तो निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस बार भी पहले एलेन ने ही बात की। हालांकि उसके शब्दों से रॉकी थोड़ा हैरान हो गया, और यहां तक कि मोटे के चेहरे पर भी कुछ बदलाव दिखाई दिया। क्योंकि एलिन जिस काम की बात कर रही थी वह माल की सुरक्षा का काम था और रॉकी को यही काम खास तौर पर पसंद था। उसे लगा कि यह काम उसकी जरूरतों और कठिनाई के स्तर के हिसाब से सही है। मोटे के विचार भी रॉकी जैसे ही थे, इसलिए जब एलिन ने बात की तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। एलिन, क्या इस कार्य में कोई समस्या है? एलिन के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए रॉकी उसकी राय को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने तुरंत बात पूछा। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए एलिन ने सीधे उत्तर दिया, महाराज, इस कार्य के बारे में जानकारी बहुत अस्पष्ट है। घाटी से माल को ले जाना आसान लगता है, लेकिन रास्ते में हमें किस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये राक्षसों द्वारा किया जाने वाला हमला होगा या मनुष्यों द्वारा? इनमें से कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ग्राहक ने कहा है कि यह कार्य तभी पूरा माना जाएगा जब स्काईशिप सारा सामान पहुंचा देगा। इसमें कितना समय लगेगा? क्या यह एक ही चक्कर में पूरा हो जाएगा या इसके लिए 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे? इस दौरान हमले होंगे या नहीं, इसका भी कार्य विवरण में उल्लेख नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मिशन बहुत विश्वसनीय नहीं है। हमें एलिन को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि वह लड़ती नहीं। दूसरों को भाड़े के सैनिकों के संघ द्वारा प्रकाशित कार्य शायद सिर्फ कार्य लगे, लेकिन एलिन के लिए वे सब व्यवसाय हैं और वह व्यवसाय को अच्छी तरह जानती है। ऐसे परिदृश्य में उसने कुछ ही शब्दों में कार्य का इतना गहन विश्लेषण किया कि रॉकी आश्चर्य से देखता रह गया और शर्म से लाल भी हो गया, क्योंकि एलिन द्वारा उठाए गए कई मुद्दे ऐसे थे जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिन का विश्लेषण बहुत ही उचित लग रहा था, और उसकी बात सुनने के बाद रॉकी को भी यह महसूस होने लगा कि यह कार्य अविश्वसनीय था। परिणाम स्वरूप उन्होंने लिलिया और मोटे की राय मांगी, फिर पहला कार्य समाप्त कर दिया। यदि पहला कार्य अच्छा नहीं है तो दूसरा क्या होगा? अपने पसंदीदा कार्य को समाप्त करने के बाद रॉकी केवल समझौता कर सकता था और दूसरे कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, जो कि राक्षस उन्मूलन मिशन था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना प्रश्न समाप्त किया, मोटे ने अपना सिर हिलाया, महाराज, ये कार्य बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्यों? रॉकी ने मोटे की तरफ मुड़कर क्या कहा, समझ नहीं आया। वे भी यह काम क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? महाराज, मैं कार्य में उल्लिखित राइन मैदानों में गया हूँ। जहां तक नजर जाती है ये सचमुच एक विशाल मैदान है जो राक्षसों से भरा हुआ है, जिनमें उच्च स्तरीय राक्षस भी शामिल हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं। हम ऐसी खतरनाक जगह पर बिल्कुल नहीं जा सकते। ।। मोटे के शब्दों से रॉकी स्तब्ध रह गया और उसने मन ही मन आह भरी, क्योंकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिन कार्यों को खोजने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी वे सभी असंभव थे। फिर भी रॉकी मोटे द्वारा दिए गए कारणों का खंडन नहीं कर सका। मोटे एक दानव शिकारी था और उसने किसी और से ज्यादा यात्राएं की थीं। अगर उसने कहा कि राइन के मैदान वर्जित थे तो वे निश्चित रूप से वर्जित थे। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण रॉकी को अनिच्छा से दूसरा कार्य अस्वीकार करना पड़ा और फिर उसने अपना ध्यान तीसरे कार्य की ओर लगाया। अंतिम कार्य पर नजर डालते हुए रॉकी को लगा कि इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे केवल संख्या पूरी करने के लिए चुना गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस कार्य का सामना करते हुए, जो केवल सूची को भरने के लिए था, लिलिया, एलिन और मोटे सभी चुप हो गए। आपका क्या मामला है? आखिरी टास्क के बारे में सभी की चुप्पी को देखते हुए रॉकी ने मासूमियत से अपनी बड़ी आंखें झपकाई और पूछा, महाराज, परित्यक्त लोगों द्वारा दिए गए कार्य के बारे में आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इसमें क्या शामिल है ना? रॉकी की भोली भाली अभिव्यक्ति देखकर एलिन ने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा। हालांकि एलिन के आश्चर्य का सामना करते हुए रॉकी ने अपना सिर खड़खड़ाते हुए हिलाया। दरअसल उसे द फॉरसेकन पीपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एलिन की ओर देखते हुए रॉकी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। उसके चेहरे पर उलझन का भाव था, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि द फॉरसेकन पीपल क्या है। ये देखकर कि वह वास्तव में इस मामले से अनजान था, मोटे, जो उसके पास था, बोला, महाराज, परित्यक्त लोग वह शब्द है जिसका प्रयोग हम उन लोगों के लिए करते हैं जो अभी भी इस भूमि पर रहते हैं। क्या? मोटे की बातें सुनकर रॉकी इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। बेशक उसे दोष नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वह तो किसी और ही दुनिया से आया एक यात्री था। हालांकि वह इस दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसकी समझ सिर्फ उन्हीं चीजों तक सीमित थी जिनसे वह संपर्क में आ सकता था। जहां तक कुछ ऐसे विषयों की बात है जिनका सामना उसने अपने आगमन के बाद से कभी नहीं किया था, रॉकी को बहुत कम जानकारी थी और द फॉरसेकन पीपल ऐसा ही एक विषय था। 100 साल से भी पहले लोगों ने स्काई सिटी बनाई और राक्षसों से बचने के लिए आकाश की ओर भाग गए, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन उस समय स्थिति इतनी आसान नहीं थी। दरअसल जब इंसानों ने पहला स्काई सिटी बनाया था और बड़े पैमाने पर आसमान की ओर पलायन के लिए तैयार थे, तो एक बड़ा तबका इस विचार का विरोध कर रहा था। इस विरोध का जिक्र वेंसेल की वसीयत में भी मिलता है, और साथ ही स्काई सिटी में लोगों को रखने की क्षमता बहुत सीमित थी। इसके परिणाम स्वरूप आकाश की ओर बढ़ने के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत से लोग स्वेच्छा से या अनिच्छा से जमीन पर ही रुके रहे। बाद में जैसे जैसे और भी आकाशीय नगरों का निर्माण हुआ, लोगों ने सचमुच गंभीरता से पलायन करना शुरू कर दिया। फिर भी अभी भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिन्होंने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए उस जमीन पर ही रहने का फैसला किया, और ये वे लोग थे जिन्होंने उस भूमि पर रहने का निर्णय लिया जिसे परित्यक लोग के नाम से जाना गया। परित्यक लोगों ने आकाश की ओर भागने वालों को गद्दार कहा, क्योंकि वे उनके कृत्य को एक कायरतापूर्ण पलायन मानते थे, उस धरती के प्रति समर्पण मानते थे जिसने उन्हें पाला था। इसलिए परित्यक लोग आकाश की ओर भागने के बजाय धरती पर ही रहकर राक्षसों से युद्ध करना पसंद करते थे। विचारों के इस मतभेद के कारण आकाश युग की शुरुआत में दोनों समूह दो बड़े खेमों में बढ़ गए, जिससे अंतहीन विवाद छिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पर जिद्दी होने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे ने उन्हें काय कहा। अंततः बात इतनी बढ़ गई कि दुश्मनी चरम पर पहुंच गई और उनके बीच सारे रिश्ते टूट गए। ये स्थिति कई दशकों तक जारी रही तथा पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर प्रथम जवाबी आक्रामक युद्ध शुरू होने के बाद, दोनों पक्षों के बीच संबंधों में सुधार आना शुरू हुआ। आज दोनों समूहों के बीच बातचीत लगातार बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पर रॉकी को जो आखिरी काम मिला था उसे ही लीजिए, जिस व्यक्ति ने उसे पोस्ट किया था वह जमीन से आया था। मुझे सचमुच इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीजें हो रही हैं। मोटे की बात सुनकर रॉकी ने धीरे से सिर हिलाया और खुद को उस जादुई ऊर्जा की छवि के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया जो वेंसेल ने लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में छोड़ी थी। अब इस पर थोड़ा विचार करने पर वेंसेल की वसीयत में सचमुच लिखा था कि वह अकेला नहीं था जो उस जमीन पर रुका था, बल्कि उसके जैसे कई और लोगों ने भी वहीं रहकर राक्षसों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया था। और अब जब वह जानता था कि लोग अभी भी उस भूमि पर रहते हैं और लगातार राक्षसों से लड़ रहे हैं, तो रॉकी को अचानक कुछ और ख्याल आया। यदि लोग अभी भी उस भूमि पर हैं और राक्षसों का विरोध कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भूमि पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया गया है? नहीं, जमीन पर बहुत समय से कब्जा है। हालांकि उसके इस सवाल का जवाब देते हुए, चाहे वह मोटे हो, एलिन हो या लिलिया, सभी ने सिर हिला दिया। इस बार लिलिया ही बोली और बाद में बोली, हालांकि जो लोग जमीन पर रह गए उन्होंने लगातार राक्षसों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। जब स्काई सिटी का आविष्कार हुआ था तब राक्षसों ने लगभग 2/3 भूमि पर कब्जा कर लिया था, लेकिन स्काई युग के शुरुआती चरणों में केवल 10 साल से भी कम समय में भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई। लगभग सभी शहर राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और यद्यपि भूमि पर बचे हुए लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अंत में वे केवल उन स्थानों पर छिप सके जहां राक्षस कम आते थे और बड़ी मुश्किल से जीवित बच पाए। अभी तक धरती पर केवल 3 ही शहर ऐसे हैं जो वास्तव में मानव नियंत्रण में हैं, और इन 3 शहरों के बचे रहने का कारण हमारे द्वारा छेड़े गए 2 जवाबी युद्ध हैं, अन्यथा धरती पर एक भी शहर नहीं बचा होता। सो है, लिलिया की बात सुनकर रॉकी ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके शब्दों से यह समझना मुश्किल नहीं था कि जमीन पर रहने वालों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल थी। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, जमीन पर रहने का मतलब था रोजाना राक्षसों और ऐसे भयानक जीवों का सामना करना। अगर उनकी जिंदगी आसान होती तो अजीब होता। लिलिया द्वारा बताए गए जवाबी युद्धों के बारे में रॉकी को कुछ कुछ याद था। तथाकथित जवाबी युद्धों का मतलब था आकाश में रहने वाले लोगों द्वारा सभी आकाशीय नगरों को एकजुट करके जमीन पर कब्जा करने के लिए एक बड़े जवाबी अभियान में भाग लेना। ये युद्ध 2 बार हुए और इन्हें क्रमशः प्रथम और द्वितीय जवाबी युद्ध के नाम से जाना गया। इन दोनों युद्धों का पैमाना अभूतपूर्व था और प्रत्येक युद्ध में लगभग सभी स्काई सिटीज को सक्रिय होना पड़ा। युद्ध बेहद भीषण था, जिसमें लगभग 10 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए और दर्जनों स्काई सिटीज नष्ट हो गए, जिनमें कई बड़े शहर भी शामिल थे। फिर भी इन सब के बावजूद भूमि दानवों के हाथों में रही और दोनों युद्धों का परिणाम विफलता में समाप्त हुआ। ये सारी बातें पाठ्य पुस्तकों में थी, इसलिए रॉकी को याद थी। हालांकि लिलिया ने अभी जो कहा था उससे लगता था कि दोनों जवाबी युद्ध विफल रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से निरर्थक नहीं थे, क्योंकि कम से कम उनकी वजह से उस देश के 3 शहर बच गए। रॉकी जब इस पर विचार कर रहा था तभी एलिन बोली, लेकिन परित्यक्त लोगों को कम मत आंकिए, धरती पर उनके कठोर जीवन के बावजूद वे बहुत धनी हैं। ओह, ऐसा क्यों? ये सुनकर रॉकी थोड़ा चौंक गया, जाहिर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस जमीन पर रहने वाले लोग अमीर कैसे थे? ये कैसे संभव था जब वे हर दिन राक्षसों द्वारा मारे जाने के खतरे में रहते थे, वे अमीर कैसे हो सकते थे? महाराज, यह मत भूलिए कि धरती पर संसाधन आकाश की अपेक्षा कहीं अधिक प्रचुर हैं। रॉकी की उलझन देखकर एलिन ने विस्तार से बताया, हालांकि इस जमीन पर रहने वाले लोग राक्षसों की छाया में रहते हैं, लेकिन जमीन के प्रचुर संसाधनों और हमारे साथ बेहतर संबंधों के कारण दोनों पक्षों के बीच अक्सर व्यापार होता रहता है। उदाहरण के लिए, मेरे स्वामी ने जो काम चुना है उसे ही लीजिए। इस कार्य का लक्ष्य एक खदान की रक्षा में सहायता करना है, और यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये खदान परित्यक्त लोगों की होनी चाहिए। महाराज, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक खदान कितना बड़ा मूल्य उत्पन्न कर सकती है ना? एलिन के स्पष्टीकरण से रॉकी को एक नया विचार आया, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कहा था। उस भूमि पर रहने वाले लोगों के पास अनगिनत संसाधन हैं, और इन संसाधनों को स्काई सिटी को बेचने से धन का निरंतर प्रवाह होगा। और चून की बातचीत पूरी तरह से काम पर आ गई थी, इसलिए रॉकी ने पूछा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं? एक लंबी चर्चा के बाद सभी का ध्यान अंततः प्रारंभिक विषय पर आ गया, क्या परित्यक्त लोगों से कार्य स्वीकार किया जाए या नहीं। रॉकी को सबक सिखाने के बाद वह और भी अधिक भ्रमित हो गया, इसलिए उसके पास लिलिया और अन्य लोगों की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महाराज, यदि हम केवल लाभ की बात करें तो ये कार्य स्वीकार्य है। इस बार सबसे पहले एलिन बोली, इस काम का कमीशन 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और युद्ध की लूट का सारा माल हमारा है। इसका मतलब है कि युद्ध में मारे गए सभी राक्षस हमारे हैं, और इसके अलावा वे हमें 500 किलोग्राम पीली शल्क वाली खदान भी देंगे। अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो यदि हम ये कार्य पूरा कर सकें तो हम कम से कम 30 से 50 हजार स्वर्ण सिक्के कमा सकते हैं। इतना बड़ा मुनाफा देखकर एलिन सचमुच ललचा गई, और इसीलिए उसे लगा कि यह काम ठीक है। हालांकि वह उन्हें ये याद दिलाना भी नहीं भूली, बस याद रखिए महाराज, किसी भी कार्य का लाभ उसके खतरे के समानुपाती होता है। यदि इस कार्य से इतना बड़ा लाभ कमाना है तो इसकी कठिनाई भी निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी। हम रॉकी ने सिर हिलाया और गहरी सोच में डूब गया। एलिन की याद उसे बहुत अच्छी लगी। उसके हिसाब से इस काम से होने वाला मुनाफा वाकई बहुत ज्यादा था, लेकिन यह न भूलें, भाड़े के सैनिकों का संग कोई दान पुण्य नहीं है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इसलिए किसी काम का मुनाफा जितना ज्यादा होगा, जोखिम भी उतना ही ज्यादा और संभवतः उससे भी ज्यादा होगा। मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन उस समय लिलिया ने बोलना शुरू किया और ऐसा लगा कि वह एलिन की राय से पूरी तरह सहमत नहीं थी। रॉकी, मुझे लगता है कि अगर हम ये काम हाथ में लेंगे तो खतरा तो होगा ही, लेकिन कठिनाई पिछले दो कामों से ज्यादा नहीं होगी। ओह, लिलिया के शब्दों ने सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया और रॉकी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह लिलिया के व्यक्तित्व को किसी से भी बेहतर जानता था और इसीलिए वह हैरान था। उसके नजरिए से लिलिया का ऐसे खतरनाक काम का कड़ा विरोध करना स्वाभाविक ही होता। फिर लिलिया ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम भूल गए? मैं एक बार लड़ने के लिए पुराने मालिक के पीछे पीछे जमीन पर गई थी, इसलिए मुझे परित्यक्त लोगों के साथ सेना में शामिल होने का अनुभव है। आपने शायद एक बात नजरअंदाज कर दी है, हालांकि जमीन पर रहने वाले लोगों को हमेशा राक्षसों से खतरा बना रहता है, लेकिन इसने उन्हें बहादुर और युद्ध में कुशल भी बनाया है। लगभग सभी लोग, यहां तक कि महिलाएं भी, बहुत ताकतवर हैं, वरना आज वे जमीन पर जिंदा नहीं रह पाती। इस कार्य का लक्ष्य खदान की रक्षा में परित्यक्त लोगों की सहायता करना है, जिसका अर्थ है कि हमें रक्षा का भार अकेले नहीं उठाना होगा। परित्यक्त लोग बहुत सारा दबाव साझा करेंगे, क्योंकि खनिज उनके हैं। वे ही इस कार्य में सबसे अधिक परिश्रमी और प्रतिबद्ध होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह कार्य वास्तव में बहुत खतरनाक होगा, लेकिन यदि हम जोखिम के मुकाबले लाभ के अनुपात की बात करें तो यह वास्तव में तीनों कार्यों में सबसे अधिक होगा। ये तो सही है। ये सब सुनकर रॉकी सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे लिलिया की बातें बिल्कुल वाजिब लगी। आखिरकार जिन खनिज संसाधनों की रक्षा उन्हें करनी थी वे द फॉस्केन पीपल के थे, जो निश्चित रूप से उससे ज्यादा समर्पित और प्रतिबद्ध होंगे। और यदि परित्यक्त लोगों की युद्ध क्षमता उतनी ही प्रबल होती जितनी लिलिया ने कहा, तो इससे निश्चित रूप से उनका दबाव कुछ कम हो जाता। महाराज, मैं भी लिलिया की राय से सहमत हूँ, हम ये कार्य कर सकते हैं। रॉकी के बार बार सिर हिलाने पर मोटे ने भी अपनी राय व्यक्त की। और यदि उसने ऐसा कहा भी तो इसका अर्थ था कि लिलिया, एलिन और मोटे सभी ने परित्यक्त लोगों से संबंधित कार्य की पुष्टि की। ठीक है, तो फिर हम ये काम शुरू करें। इससे रॉकी को भरोसा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने टास्क रिसीवर का इस्तेमाल करके भाड़े के सैनिकों के समूह से संपर्क किया और सफलतापूर्वक टास्क स्वीकार कर लिया। कार्य स्वीकार करने की प्रक्रिया बहुत सरल थी। इसमें रॉकी द्वारा बताए गए भाड़े के सैनिकों के समूह के आकार की पुष्टि की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि द फॉरसेकन पीपल से मिलने के बाद वे भाड़े के सैनिकों के समूह से इसकी पुष्टि कर देते। अगर रॉकी ने झूठ बोला होता तो वे उसकी योग्यता की पुष्टि नहीं करते। कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रॉकी को निर्देशांकों का एक सेट दिया गया। उसे एक हफ्ते के भीतर उन निर्देशांकों पर द फॉरसेकन पीपल से मिलना था, अन्यथा कार्य स्वतः ही विफल माना जाता। रॉकी के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि स्काई सिटी खुद उड़ सकती थी। इसलिए उसने स्काई सिटी की उड़ान की दिशा बदल दी और सीधे निर्देशांक वाले स्थान की ओर चल पड़ा। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद सभी ने अपनी अंतिम तैयारियां शुरू कर दी। रॉकी ने अपने शून्य जादुई कवच को ठीक करना शुरू कर दिया। लिलिया अपने रून उपकरणों को व्यवस्थित कर रही थी और मोटे गार्ड कोर में जाकर सबको ये खबर सुनाने लगा, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हुआ। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान एलिन ने रॉकी को कुछ बताया कि जियाशी पहले ही जा चुकी है। जियाशी गुस्से में थंडरहॉक सिटी छोड़कर चला गया था। बदकिस्मती से जिस दिन वह गया, रॉकी गार्ड कोर में एक समीक्षा के लिए सभी को ले जा रहा था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वह चला गया है, और उसके जाने की खबर अगले दिन ही एलिन को मिली। जब तक रॉकी को इस बात का पता चला, तब तक जियाशी कई दिन पहले ही जा चुका था। क्या उसने जाते समय कुछ कहा? ये जानने पर कि जियाशी अंततः चली गई है, रॉकी ने हंसते हुए पूछा। मैंने स्काईपोर्ट के प्रभारी फेली से सुना कि वह गालियां और गालियां देते हुए चला गया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने कुछ भी उपयोगी बात नहीं कही। एलिन ने जियाशी का जिक्र करते हुए अपने होठों को हल्का सा मोड़कर मुस्कुरा दिया, मानो वह मजाक कर रही हो। इस बार जियाशी सचमुच मजाक का पात्र बन गया था, क्योंकि थंडरहॉक शहर में 1.5 महीने बिताने के बाद भी वह कुछ हासिल नहीं कर पाया था। इतना ही नहीं, उसके द्वारा लाए गए खाने के 5 जहाज ज्यादातर बर्बाद हो गए। इसलिए जब एलिन ने कहा कि जियाशी जाते समय गालियां देता रहा, तो उसके शब्द इससे अधिक सत्य नहीं हो सकते थे। वास्तव में जियाशी सिर्फ गालियां ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसे मारने की इच्छा भी हो रही थी। अपनी बुद्धि के बावजूद उसे यह कैसे पता नहीं चला कि रॉकी और उसकी टीम ने 1 महीने से भी ज्यादा समय तक उसके साथ बंदरों जैसा खेल खेला है। इसलिए जाते हुए वह न सिर्फ गालियां दे रहा था, बल्कि यह भी धमकी दे रहा था कि एजोर कॉमर्स गिल्ड इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। दुर्भाग्य से रॉकी को ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए नहीं कि उसे एजोर कॉमर्स गिल्ड की परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे जियाशी की परवाह नहीं थी। एजोर कॉमर्स गिल्ड वाकई एक बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन क्या वे सचमुच इस मामले में थंडरहॉक सिटी पर हमला करेंगे सिर्फ जियाशी और खाने के 5 जहाजों के लिए? हरगिज नहीं। दरअसल रॉकी को लगा कि जियाशी को उससे बदला लेने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वापस आने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने अपनी सफाई कैसे दे। उसने 1.5 महीना बिताया और कोई सौदा पक्का नहीं कर पाया, इसके अलावा उसने काफी मात्रा में खाना गंवा दिया। इसकी जिम्मेदारी और नुकसान थंडरहॉक सिटी पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जियाशी को ही इसे उठाना होगा। तो जहां तक रॉकी की बात है, जियाशी का जाना उसकी समस्या थी। रॉकी के पास इन बातों की चिंता करने का समय नहीं था, उसे आने वाले काम की तैयारी पर ध्यान देना था, यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। भाड़े के सैनिकों के संघ का मिशन अब रॉकी की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और उसने इस मामले में कोई गलती नहीं होने दी। इसलिए थंडरहॉक शहर के निर्देशांकों की ओर उड़ान भरते समय उसने न केवल अपने शून्य जादुई कवच को इस तरह से ठीक किया कि वह युद्ध में बिना किसी रुकावट के काम करे, बल्कि उसने उन सभी संभावित समस्याओं पर भी पहले से विचार किया जो उनके सामने आ सकती थी। जहां तक उनके जाने के निर्देशांकों का सवाल है, वे थंडरहॉक सिटी से ज्यादा दूर नहीं थे। मिशन के लिए जरूरी था कि वे 7 दिनों के अंदर पहुंच जाएं, लेकिन थंडरहॉक सिटी सिर्फ 3 दिनों में ही ऊपर दिए गए लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंच गया था। ध्यान, थंडरहॉक सिटी के स्काईपोर्ट के अंदर करीने से सजे गार्ड रॉकी के सामने खड़े थे। मोटे के आदेश पर वे सब अपनी छाती फुलाकर सीधे खड़े हो गए। इस समय तक पहरेदारों को मिशन के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे अच्छी तरह समझ गए थे कि वे थंडरहॉक शहर के पहरेदार हैं जो रॉकी का है, इसलिए वे बिना किसी सवाल के रॉकी का आदेश मानेंगे। हालांकि मानसिक तैयारी के बावजूद प्रस्थान के समय हर कोई तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। ये तनाव प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बेशक यह अपेक्षित था, क्योंकि इन गार्डों ने पहले कभी किसी युद्ध का अनुभव नहीं किया था, इसलिए यह मिशन उनका पहला मिशन माना जा सकता था। ऐसे परिदृश्य में नगर स्वामी होने के नाते रॉकी को स्वाभाविक रूप से सभी का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता थी। तभी रॉकी अपना शून्य जादुई कवच पहने सबके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नजर हर चेहरे पर घूमी, हर पहरेदार के हाव भाव को कैद करते हुए, फिर वह बोला, गार्डो, क्या तुम जानते हो कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ, नगर स्वामी के लिए मिशन पूरा करने के लिए। रॉकी के शब्दों के अंत में गार्डो ने एक स्वर में जवाब दिया। गलत। हालांकि रॉकी अचानक गुस्से में चिल्लाया, जिससे सभी चौंक गए। आप यहां सिर्फ एक मिशन पूरा करने के लिए नहीं हैं, आप यहां लड़ने के लिए हैं। थंडरहॉक शहर के रक्षक के रूप में युद्ध आपका शपथपूर्वक कर्तव्य है, और इस बार आप राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में मेरे पीछे आकर उस कर्तव्य को पूरा करेंगे। ये घोषणा करने के लिए अपनी आवाज ऊंची करने के बाद रॉकी एक पल के लिए रुका। भीड़ पर नजर डालने के बाद ही उसने और भी संतुलित स्वर में अपनी बात जारी रखी। गार्डो, क्या तुम राक्षसों से लड़ने से डरते हो? क्या तुम डर गए हो? इससे पहले कि गार्ड जवाब दे पाते, रॉकी ने उनमें से एक की ओर इशारा करके सीधे पूछा। मैं, नगर स्वामी, रॉकी द्वारा अचानक निशाना बनाए जाने पर यह गार्ड स्पष्ट रूप से तैयार नहीं था और बोलने में संघर्ष कर रहा था। इसलिए रॉकी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम डरे हुए हो, मैं देख सकता हूँ। इतना कहने के बाद उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आपको मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपके चेहरों पर उत्तर देख लिया है। मैं जानता हूं कि आप घबराए हुए हैं, यहां तक कि डरे हुए भी हैं, लेकिन ये सामान्य बात है। राक्षसों के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई के दौरान मैं भी तुम्हारी तरह ही घबराया हुआ था और डरा हुआ था। अगर मेरी सबसे वफादार रक्षक लिलिया लगातार मेरी रक्षा न करती तो शायद मैं पहले ही मर चुका होता। तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता, हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम कुछ जान लो। राक्षस अजेय नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके साथी आपके बगल में हैं और मैं आपका नगर स्वामी युद्ध में सबसे आगे रहूंगा। मैं आपका नगर स्वामी युद्ध में आपका सबसे वफादार रक्षक रहूंगा। गार्डो, मुझे बताओ क्या तुम डर गए हो?
कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं।
रॉकी के प्रोत्साहन से गार्ड अचानक उत्साहित हो गए और एक गगनभेदी दहाड़ लगाए और उस दहाड़ में उनके चेहरों का तनाव और उनकी आंखों का डर गायब हो गया। सभी लोग विमान में सवार हो जाएं, प्रस्थान के लिए तैयार हो जाएं। तीन गर्जनाओं के बाद रॉकी ने जहाज पर चढ़ने का आदेश जारी किया और उपस्थित सभी गार्ड तुरंत पहले से तैयार स्काईशिप पर चढ़ गए। जैसे ही सभी गार्ड जहाज पर चढ़ गए, रॉकी भी लिलिया और मोटे के साथ जहाज पर चढ़ गया और उसके आदेश का पालन करते हुए ठीक 10 स्काईशिप ऊपर चढ़ गए। धीरे धीरे थंडरहॉक सिटी के रक्षात्मक जाल से बाहर निकलकर भूमि की ओर बढ़ रहे थे। इस बार रॉकी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर में सभी स्काईशिप तैनात कर दिए थे और 200 गार्ड कोर में से पूरे 180 लोगों को ले लिया था, जिससे शहर में सिर्फ 20 गार्ड ही तैनात रह गए थे। साथ ही वह लिलिया और मोटे को भी अपने साथ ले आया था, जबकि एलिन थंडरहॉक सिटी में समन्वय के लिए रुकी हुई थी। इस मिशन के लिए रॉकी ने वास्तव में अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को दांव पर लगा दिया था ताकि यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो सके। इसके बाद स्काईशिप थंडरहॉक सिटी से रवाना हुए और जमीन की ओर नीचे की ओर उड़ान भरी। रॉकी, लिलिया और मोटे केबिन में अंतिम चर्चा और तैयारियां कर रहे थे। लिलिया, अगर इस बार बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई तो तुम गार्ड कोर की कमान संभालोगी। केबिन के अंदर रॉकी ने लिलिया की ओर देखा फिर कहा। उनमें से मोटे की शक्ति निस्संदेह सबसे प्रबल थी, लेकिन उसकी ताकत व्यक्तिगत थी। एक पूर्व दानव शिकारी होने के नाते मोटे को कमान संभालने का अनुभव नहीं था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें केवल लिलिया ही अनुभवी थी। चूंकि लिलिया पहले रॉकी के पिता के साथ युद्ध में गई थी और जानती थी कि वास्तविक युद्ध कैसा होता है, इसलिए रॉकी ने उसे गार्ड कोर की कमान सौंपने का निर्णय लिया। ठीक है, लिलिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेने के लिए सिर हिला दिया। मोटे, अगर हम राक्षसों से युद्ध करते हैं तो तुम्हें लिलिया की आज्ञा का पालन करना होगा और पहरेदारों का नेतृत्व भी करना होगा। ये कार्य अब तुम्हारा है, चिंता मत करो मेरे प्रभु। सिर हिलाने के बाद मोटे ने लिलिया की ओर देखा। मिस लिलिया, मेरा जीवन आपके नियंत्रण में है। जहां तक मेरा प्रश्न है, लिलिया और मोटे की व्यवस्था करने के बाद रॉकी ने अपने बारे में कहा, एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो मैं अकेले ही काम करूंगा, एक तरफ सबसे मजबूत राक्षसों से निपटूंगा और दूसरी तरफ फ्लोटिंग युद्धपोत की कमान संभालूंगा। ये ठीक है, लेकिन बहुत सावधान रहें और इसे ज्यादा करने की कोशिश न करें। रॉकी की व्यवस्थाओं को रोकने के बजाय लिलिया ने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि बड़े पैमाने पर युद्ध की स्थितियों में जहां उन्हें बड़ी संख्या में राक्षसों का सामना करना पड़ता है, रॉकी अपने शून्य जादुई कवच के साथ युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता। उसे वास्तव में सबसे शक्तिशाली राक्षसों से निपटना था और अपनी उड़ान क्षमता के कारण युद्ध के दौरान आकाशयानों को नियंत्रित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति वही था। नगर स्वामी, जैसे ही रॉकी ने ये व्यवस्थाएं पूरी की, केबिन का दरवाजा अचानक खुल गया और फेली अंदर आ गई। दरवाजे पर खड़े फेली ने रॉकी को सलाम किया, फिर सूचना दी, नगरपाल, हम भूमि पर पहुंच गए हैं और निर्देशांक की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है। ये सुनने के बाद रॉकी ने सिर हिलाया, फिर लिलिया और मोटे की ओर देखा। चलो चलें, हमारे नियोक्ता से मिलने का समय हो गया है। ये कहकर वह उन दोनों के साथ केबिन से बाहर चला गया। पुनश्च इतने लंबे समय की शांति के बाद अब असली लड़ाई का समय आ गया है। कृपया रॉकी का मनोबल बढ़ाने के लिए उसे वोट दें। लिलिया और मोटे के साथ रॉकी केबिन से बाहर निकला और स्काईशिप के डेक पर खड़ा होकर बंजर भूमि को देखने लगा। अब तक आकाशयान भूमि पर पहुंच चुका था और धीरे धीरे जमीन से कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए एक उजाड़ भूभाग पर पहुंच रहा था। इस बंजर जमीन पर न तो एक भी पेड़ था और न ही घास का एक भी तिनका, बस जंग जैसी पीली मिट्टी जमीन पर बिछी थी। कभी कभी बवंडर धूल के झोंके उड़ाकर वीरांगी का माहौल बना देते थे। स्काईशिप के अगले हिस्से पर खड़े होकर नीचे के उदास परिदृश्य को देखते हुए रॉकी को इस दृश्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो रही थी। वह पहले भी दो बार इस भूमि पर आया था, लेकिन हर बार उसने हरे भरे जंगल और हरी भरी घास के मैदान देखे थे। वह वीरानी कभी नहीं देखी थी जो वह अब देख रहा था। निराशाजनक दृश्य के बावजूद उन्हें लगा कि यह भूमि की वर्तमान स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है, कम से कम रॉकी का तो यही मानना था। इसके बाद स्काईशिप अपने मिशन के निर्देशांक की ओर बढ़ता रहा और कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने एक खड़ी पहाड़ी दिखाई दी। क्या ये कौन सा पहाड़ है? जब उन्होंने दूर स्थित शिखर को देखा तो रॉकी दंग रह गया, यहां तक कि लिलिया और मोटे भी उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। पहाड़ बादलों में ऊपर उठ गया, जिससे आकाशयान का मार्ग अवरुद्ध हो गया और इसकी अत्यधिक खड़ी सतह मानो कुल्हाड़ियों से काटी गई हो उसे एक तीक्ष्ण रूप दे रही थी। फेली, क्या हो रहा है? हम क्यों नहीं मुड़ रहे हैं? विशाल पर्वत ने उनका रास्ता रोक रखा था, फिर भी आकाशयान सीधे उसी ओर बढ़ रहा था, जिससे रॉकी को तत्काल फेली को बुलाने के लिए प्रेरित होना पड़ा। सर, आपने जो निर्देशांक हमें दिए हैं वे वास्तव में यही पर्वत हैं। फेली दुखी दिख रहा था, क्योंकि रॉकी ने जो मिशन निर्देशांक दिए थे वे इसी पर्वत के लिए थे। ये सुनकर रॉकी दंग रह गया, स्पष्टतः उसने ऐसे परिणाम की आशा नहीं की थी। इस समय तक आकाशयान पहाड़ के बहुत करीब आ चुका था और जैसे ही वे पास पहुंचे पहाड़ की असली विशालता सामने आ गई, जो रॉकी की कल्पना से कहीं परे थी। पहले तो उसे दूर से ही पहाड़ का झटका महसूस हुआ था, लेकिन अब पास से देखने पर उसे न केवल झटका लगा बल्कि डर भी महसूस हुआ, क्योंकि पर्वत न केवल बादलों तक पहुंच गया था बल्कि उसने सूर्य को इस प्रकार अवरुद्ध कर दिया था मानो भूमि पर एक विशाल दीवार खड़ी हो। उसकी विशाल उपस्थिति एक दमनकारी भावना पैदा कर रही थी, जिससे आसपास के किसी भी व्यक्ति का दम घुट रहा था। यह मिशन स्थान था ऐसी जगह पर। सर, नीचे लोग हैं। उस समय मोटे ने अचानक आगे की ओर इशारा किया और जब रॉकी ने उसकी उंगली की दिशा का अनुसरण किया तो उसने देखा कि पहाड़ के नीचे से लोगों का एक समूह उन्हें हाथ हिला रहा था। इन लोगों को देखकर रॉकी को पता चल गया कि निर्देशांक सही थे, इसलिए उसने तुरंत सभी स्काईशिप को वहां जाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में 10 स्काईशिप सुरक्षित रूप से उतर गए और जैसे ही रॉकी और गार्ड कोर उतरे वह समूह जो हाथ हिला रहा था वह भी आ गया। पास आते हुए लोगों को देखकर रॉकी को पता चल गया कि वे अवश्य ही परित्यक्त लोग होंगे जो जमीन पर रहते थे, क्योंकि उनकी वेशभूषा आकाश में रहने वालों से काफी भिन्न थी। ये कहना कि उन्होंने भद्दे कपड़े पहने थे शायद अशिष्टता होगी, लेकिन उनकी वेशभूषा निश्चित रूप से आकाश में रहने वालों से तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके तुरंत बाद परित्यक्त लोग करीब आ गए और फिर नेता ने दूसरों को रुकने का इशारा किया और अकेले रॉकी और उसके समूह के पास पहुंचा। माफ कीजिए, क्या आप थंडरहॉक भाड़े के सैनिक समूह से हैं? थंडरहॉक मर्केनरी ग्रुप वह नाम था जो रॉकी ने तब सोचा था जब उसे मर्केनरी गिल्ड में मिशन स्वीकार करते समय आसान संपर्क के लिए एक नाम की आवश्यकता थी। हाँ, मैं नेता हूँ। इस पुष्टि के साथ ही रॉकी भी आगे बढ़ा और दूसरे पक्ष की ओर चल पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम लिन फेंग है। मैं बैकहिल गांव का सैनिक कप्तान हूँ। हमारे गांव में आपका स्वागत है। जब रॉकी पास आया तो परित्यक्त लोगों का नेता मुस्कुराया और बोला। लिन फेंग नाम का ये हट्टा कट्टा आदमी लगभग 30 साल का था, जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए था और उसका शरीर बहुत मजबूत था, जिससे पहली नजर में ही उसे देखकर बहुत विश्वसनीय आभास होता था। नमस्ते, मेरा नाम रॉकी है। मैं थंडरहॉक भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता हूँ। लिन फेंग की ओर सिर हिलाते हुए रॉकी ने भी अपना संक्षिप्त परिचय दिया। अपने परिचय के दौरान लिन फेंग ने लगातार अपना सिर हिलाते हुए ऊपर से नीचे तक उसका मूल्यांकन किया। रॉकी इस व्यवहार से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक प्रभावशाली शून्य जादू कवच पहना हुआ था, जिससे लिन फेंग की गहन जांच का पता चला। हालांकि लिन फेंग तब अपनी उत्तेजना को मुश्किल से छिपा पाए और बोले, नेता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास 10 तैरते युद्धपोत होंगे। अब मुझे राहत मिली है। तो वह उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। रॉकी को अजीब लगा, क्योंकि पता चला कि लिन फेंग उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े 10 स्काईशिप को देख रहा था और वह केवल स्काईशिप से ही संतुष्ट था। बेशक इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए रॉकी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी न तो उसका शून्य जादुई कवच था और न ही थंडरहॉक सिटी की रक्षक सेना, बल्कि ये 10 तैरते हुए युद्धपोत थे। राक्षसों के विरुद्ध किसी भी युद्ध में तैरते हुए युद्धपोत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि आकाशयानों पर लगे जादुई तोपें अत्यंत शक्तिशाली होती थी। अतः पर्याप्त संख्या में युद्धपोतों के साथ राक्षस भी जादुई तोपों की बौछार का सामना नहीं कर पाते थे। इसलिए ये देखकर कि रॉकी 10 फ्लोटिंग युद्धपोत लाया था, लिन फेंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ, इस हद तक कि उसने रॉकी की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। नेता, मेरे पीछे गांव तक आइए, गांव का मुखिया आपका इंतजार कर रहा है, लिन फेंग ने कहा। संक्षिप्त परिचय के बाद लिन फेंग ने बिना समय गंवाए रॉकी और उसके समूह को बैकहिल गांव की ओर निर्देशित किया, क्योंकि वह उनके मिशन का वास्तविक स्थान था। जब वे बैकहिल गांव की ओर जा रहे थे तो चलते समय उन्होंने बातचीत की और इस बातचीत के माध्यम से रॉकी को उस क्षेत्र के बारे में भी पता चला जहां वे आए थे। जिस जगह पर वे इस समय थे उसे कार्लसन वेस्टलैंड कहा जाता था। वह ऊंची चोटी जिसने सबकी सांसें रोक ली थी स्काईब्रेकर पीक के नाम से जानी जाती थी और लिन फेंग का गांव उसी पहाड़ की तलहटी में बसा था। रॉकी असल में बैकहिल विलेज के बारे में बहुत उत्सुक था, जैसा कि लिन फेंग ने बताया था। पार करने के बाद से वह हमेशा स्काई सिटी में ही रहता था और उसने कभी नहीं देखा था कि वहां लोग कैसे रहते हैं। हालांकि जब उन्होंने अंततः लिन फैंग के मार्गदर्शन में बैकहिल गांव को देखा तो वे पूरी तरह से अचंभित रह गए, क्योंकि यह कोई साधारण गांव नहीं था बल्कि एक छोटे किले जैसा था। पुनश्च इस सप्ताह कोई अनुशंसा नहीं है, इसलिए कृपया अनुशंसा टिकट मांगें और इस स्थान को सुरक्षित रखें। आज बाद में एक और अपडेट होगा। बैकहिल गांव वास्तव में पहाड़ की तलहटी में नहीं बल्कि स्काईब्रेकर पीक के अंदर स्थित है। जैसा कि पहले बताया गया है, स्काईब्रेकर पीक न केवल बादलों में ऊंचा है बल्कि पूरा पहाड़ चट्टानों से बना है, जो इसे एक नुकीला रूप देता है। हालांकि ब्रोकन माउंटेन पीक के तल पर एक बड़ी दरार है जो खड़ी चट्टानों की दीवारों को नीचे से ऊपर तक दो भागों में विभाजित करती है, और बैकहिल विलेज इसी दरार के भीतर स्थित है। दरार में बसा गांव तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा है और वहां सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास द्वार है जो एक प्राकृतिक अवरोध का काम करता है। इसके अलावा उन्होंने चट्टान की दरार पर एक ऊंची दीवार बना दी है जिससे ऐसा लगता है मानो दरार को भर दिया गया हो। परिणाम स्वरूप बैकहिल गांव स्काईब्रेकर पीक के भीतर पूरी तरह से छिपी हुई एक बस्ती बन गया। जब तक राक्षस प्रवेश द्वार की ऊंची दीवारों को तोड़ नहीं पाते, वे गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस प्राकृतिक भूभाग ने बैकहिल गांव को 100 साल से भी ज्यादा समय तक अस्तित्व में रहने दिया। ये गांव न केवल राक्षसों के आक्रमण से पहले से ही मौजूद था बल्कि राक्षसों के कब्जे के 100 साल बाद भी बचा रहा। इसलिए जब लिन फैंग रॉकी और अन्य लोगों के साथ गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पत्थर से बनी 10 मीटर ऊंची दीवार देखी जिसके दोनों ओर दो मीनारें थीं जिन पर ग्रामीणों का कब्जा था। जैसे ही वे दीवार के पास पहुंचे, लिन फैंग ने ऊपर खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, गेट खोलो, थंडहॉक भाड़े का समूह आ गया है। उनके आह्वान के बाद ऊंची दीवार के द्वार धीरे धीरे खुल गए और रॉकी और उसका दल अंततः बैकहिल गांव में प्रवेश कर गया। गांव में घुसते ही रॉकी की नजर सीधे सादे घरों की कतारों पर पड़ी। ये साधारण घर 2 मंजिल से ज्यादा ऊंचे नहीं थे। अच्छे घर पत्थर के बने थे लेकिन ज्यादातर लकड़ी के बने थे, न सिर्फ सादे बल्कि देखने में बेहद कमजोर भी। ये घर कुछ महीने पहले ही बने हैं। रॉकी की निगाहों को देखकर और उसकी उलझन को भांप कर लिन फैंग ने समझाया, पहाड़ों से घिरे होने और सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारों के बावजूद हम अक्सर राक्षसों के हमलों का शिकार होते हैं, इसलिए हम अपने घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। भले ही वे नष्ट हो जाएं, फिर भी उन्हें जल्दी से बनाया जा सकता है। ओह, लिन फैंग के स्पष्टीकरण ने रॉकी को सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया और वह उस ऊंची दीवार की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका जिसके पास से वे गुजरे थे, और उसने देखा कि दीवार पर पत्थरों के रंग अलग अलग थे जो स्पष्ट रूप से कई बार मरम्मत का परिणाम था। इसका मतलब ये था कि अपने प्राकृतिक भूभाग और एक छोटे किले जैसी किलेबंदी के बावजूद बैकहिल गांव राक्षसों के हमले को रोक नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने बचाव में मदद के लिए एक भाड़े के सैनिक दल को नियुक्त करने के लिए पैसे खर्च किए। आओ मैं तुम्हें गांव के बुजुर्ग से मिलवाता हूं, फिर तुम्हारे लोगों को शिविर में ले चलता हूं ताकि हम रक्षा रणनीतियों पर चर्चा कर सकें। ये कहने के बाद लिन फैंग आगे बढ़ गया और रॉकी ने लिलिया और अन्य लोगों को गांव में इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह अकेले लिन फैंग का पीछा करता रहा। गांव के बुजुर्ग का घर गांव के बिल्कुल बीच में था, फिर भी वह कुछ खास नहीं था और अन्य ग्रामीणों के घरों से अलग नहीं लगता था। जहां तक बुजुर्ग का सवाल है, वह काफी वृद्ध थे, 70 या 80 वर्ष के लग रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी जो बताती थी कि उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली थी। कमांडर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। रॉकी से मिलने पर गांव के बुजुर्ग बहुत ही सौहार्दपूर्ण थे, यहां तक कि उन्होंने स्वयं उसे एक गिलास पानी भी पिलाया। आप बहुत दयालु हैं गांव के बुजुर्ग, कृपया मुझे बस रॉकी कहें, रॉकी ने कहा और बुजुर्ग से पानी का गिलास लिया और उनके और लिन फैंग के साथ बैठ गया। कमांडर रॉकी, मेरे साथ औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे ओल्ड जैक कहिए, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, संक्षिप्त आत्म परिचय के बाद रॉकी की ओर हाथ हिलाते हुए, और फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस बार आप अपने साथ कितने लोगों को लाए हैं? बूढ़ा जैक बिना कोई ज्यादा बातचीत किए सीधे मुद्दे पर आ गया। 10 तैरते हुए युद्धपोत, 180 योद्धा, योद्धाओं में से प्रत्येक का औसत स्तर द्वितीय स्तर का है। इसमें एक तृतीय स्तर का योद्धा और एक पांचवें स्तर का योद्धा तथा मैं स्वयं भी शामिल हूँ, रॉकी ने बिना किसी भेद के उत्तर दिया। उसे पता था कि ओल्ड जैक ये पुष्टि कर रहा था कि क्या उसकी सेना भाड़े के सैनिकों के संघ के साथ सत्यापन के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। निश्चित रूप से रॉकी की बातें सुनने के बाद ओल्ड जैक ने लिन फैंग की ओर देखा और लिन फैंग की हल्की सी सहमति देखकर वह मुस्कुरा उठे। यदि ऐसा है तो कमांडर रॉकी हमारी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है, मैं अभी भाड़े के सैनिकों के संघ से इसकी पुष्टि करूंगा। लिन फैंग द्वारा ये पुष्टि करने के बाद कि रॉकी झूठ नहीं बोल रहा है, ओल्ड जैक ने उसके सामने ही भाड़े के सैनिकों के समूह के सामने इसकी पुष्टि की। और जैसे ही ओल्ड जैक ने भाड़े के सैनिकों के संघ के साथ पुष्टिकरण पूरा किया, ये भी संकेत मिला कि रॉकी का मिशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। लिन फेंग, आप कमांडर रॉकी को शिविर में ले जाएं, ओल्ड जैक ने कार्य की पुष्टि करने के बाद कहा। फिर वह रॉकी की ओर मुड़ा, कमांडर रॉकी, आपकी टीम के सदस्य इन दिनों शिविर में रहेंगे, फिर जितनी जल्दी हो सके लिन फेंग के साथ चर्चा करें कि बचाव कैसे किया जाए।
ठीक है। सहमत होने के बाद रॉकी ने लिन फेंग के साथ ओल्ड जैक के निवास को छोड़ दिया और तुरंत सभी को गांव के भीतर शिविर में ले गया।
दरअसल इसे पड़ाव कहना थोड़ा ज्यादा होगा, यह असल में बस एक खुली जगह थी। खुले मैदान में कच्चे तंबुओं की एक कतार लगी हुई थी, जो साफ तौर पर रॉकी और उसकी टीम के रहने के लिए तैयार किए गए थे। इतनी साधारण रहने की व्यवस्था के लिए रॉकी को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वह देख सकता था कि बैकहिल विलेज में बहुत सीमित सुविधाएं हैं और उनके लिए ऐसी जगह का इंतजाम कर पाना पहले से ही बहुत अच्छा था। इसके अलावा वे यहां ज्यादा समय तक रहने वाले नहीं थे, वे इसे एक महीने तक बर्दाश्त कर सकते थे। शिविर में पहुंचने पर रॉकी ने गार्डों को कुछ निर्देश दिए और जब सब कुछ लगभग तय हो गया तो वह मिशन के विवरण पर चर्चा करने के लिए लिलिया और मोटे को लिन फेंग के साथ अपने घर ले गया। इस बार रॉकी का मुख्य काम बैकहिल गांव के गांव वालों के साथ मिलकर उनकी रक्षा करना था। किससे रक्षा? जाहिर है, राक्षसों के हमलों से रक्षा करना था। लिन फेंग के अनुसार बैकहिल गांव की आय का मुख्य स्रोत खनन था। स्काईब्रेकर पीक के अंदर एक नस थी और हर तिमाही गांव वाले उस नस में खुदाई करके खनन करते थे। ये वास्तव में बारूदी सुरंगों की आवश्यकता के कारण ही था कि बैकहिल गांव को रक्षा में सहायता के लिए रॉकी और अन्य लोगों की आवश्यकता थी। स्काईब्रेकर पीक के आसपास राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी और बैकहिल गांव जिस जगह पर स्थित था उसकी वजह से वह आमतौर पर सुरक्षित था। हालांकि जब भी गांव वाले खनन शुरू करते मुसीबतें खड़ी हो जाती, क्योंकि ब्रोकन माउंटेन पीक के आसपास एक तरह का राक्षस रहता था जो गांव वालों की खनन गतिविधियों के दौरान बैकहिल गांव पर हमेशा हमला करता था। क्या ये काली आंखों वाला दानव है? लिन फेंग के घर पर जब लिन फेंग ने संक्षेप में मिशन को शुरू से अंत तक समझाया तो उन्होंने बताया कि जब भी गांव वाले खनन शुरू करते हैं तो राक्षस हमला कर देते हैं। तभी मोटे ने बीच में आकर बात रोक दी।
बिल्कुल, ये काली आंखों वाला दानव है। मोटे को थोड़ा आश्चर्य से देखते हुए लिन फेंग ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि मोटे ने जो कहा वह पूरी तरह से सही था।
काली आंखों वाला दानव एक निम्न स्तरीय दानव है जिसका नाम उसकी पूरी तरह से काली आंखों के कारण रखा गया है। हालांकि इन दानवों में वास्तव में दृष्टि का अभाव होता है। वे बाहरी दुनिया को पूरी तरह से कंपनों के माध्यम से, विशेष रूप से जमीन से आने वाले कंपनों के माध्यम से देखते हैं। ये दानव इन कंपनों के माध्यम से ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति दर्जनों मील दूर चला गया है या नहीं।
इतना शक्तिशाली? मोटे के स्पष्टीकरण से रॉकी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।
कैप्टन, मोटे ने जरा भी अतिशयोक्ति नहीं की है, लिन फेंग ने फिर कहा। काली आंखों वाले राक्षसों का भयानक पहलू उनकी संवेदी क्षमताओं में निहित है। इस प्रकार जबकि हम खनन का शोर महसूस नहीं कर सकते हैं, काली आंखों वाले राक्षसों के लिए ये गड़गड़ाहट की तरह है। यही कारण है कि खनन हमेशा इन राक्षसों को आकर्षित करता है।
तो यह मामला है,
तो फिर काली आंखों वाले राक्षस कितने शक्तिशाली हैं? चूंकि इस बार उनका मुख्य लक्ष्य काली आंखों वाले राक्षस थे, इसलिए इन राक्षसों की ताकत स्वाभाविक रूप से केंद्र बिंदु बन गई। लेकिन रॉकी का सवाल सुनने के बाद लिन फेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद आखिरकार जवाब दिया, खैर ताकत के मामले में काली आंखों वाले राक्षस निम्न स्तर के राक्षसों के बीच अपेक्षाकृत कमजोर हैं, लेकिन ये राक्षस बहुत ही मिलनसार हैं। काली आंखों वाले राक्षस सामाजिक प्राणी हैं। लिन फेंग के ये शब्द सुनकर रॉकी अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे भी पता था कि जब राक्षस एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाएंगे तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। इसके बाद लिन फेंग ने आगे कहा, शुरू में बैकहिल गांव अपने आप ही राक्षसों के हमलों से बच सकता था। हालांकि खनन हमेशा काली आंखों वाले राक्षसों को आकर्षित करता था, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 10, और हम गांव की ऊंची दीवारों से अपनी रक्षा कर सकते थे। लेकिन आधे साल पहले किसी अज्ञात कारण से काली आंखों वाले दानवों की संख्या अचानक बढ़ गई। हम बिना तैयारी के ही भारी नुकसान में डूब गए और हमारी दीवारें टूट गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ। पिछली तिमाही में खनन के दौरान भी यही हुआ, जब काली आंखों वाले दानवों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और दीवारें फिर से टूट गईं। कई महीनों तक दीवारों में लगातार सेंधमारी के कारण गांव में भारी जनहानि हुई। शुरुआत में गांव की सुरक्षा के लिए हमारे पास 2000 से ज्यादा ग्रामीण और 600-700 सैनिक थे, लेकिन अब इस बिंदु पर लिन फेंग ने असहाय होकर आह भरी, क्योंकि गांव में राक्षसों द्वारा बार बार घुसपैठ की गई थी। अब केवल 1000 से कुछ ज्यादा ग्रामीण बचे थे और सैनिकों की संख्या भी पहले के 600-700 से घटकर अब मुश्किल से 200 रह गई थी। हताहतों की संख्या अवर्णनीय थी। उसके शब्दों से रॉकी, लिलिया और मोटे ने एक दूसरे को भारी नजरों से देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह मिशन उतना ही कठिन था जितना उन्होंने अनुमान लगाया था, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। सौभाग्य से इससे पहले ही रॉकी और उसके समूह ने मिशन के जोखिमों का आकलन कर लिया था, इसलिए यद्यपि उनका मन भारी था फिर भी वे इससे भयभीत नहीं हुए। बाद में लिन फैंग ने उन्हें बैकहिल गांव की स्थिति से परिचित कराया। राक्षसों द्वारा बार बार घुसपैठ के कारण गांव की ताकत काफी कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने रॉकी से मदद मांगी थी। फिर भी गांव में अभी भी 200 सैनिक थे। इन 200 योद्धाओं में से 100 योद्धा थे जिनकी औसत ताकत दूसरे स्तर के आसपास थी। लिन फैंग, जो कप्तान के रूप में सेवा कर रहा था, सर्वोच्च रैंक का था, गांव का एकमात्र छठे स्तर का योद्धा, यहां तक कि मोटे से भी एक स्तर ऊंचा। लिन फैंग के 100 योद्धाओं के अलावा बैकहिल गांव में 50 तीरंदाज और 50 जादूगर भी थे जो दूरस्थ सेना का गठन करते थे। इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट था कि यद्यपि गांव में सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी फिर भी इसकी समग्र शक्ति काफी प्रबल थी। यहां तक कि यदि स्काईशिप को छोड़ दिया जाए तो ये थंडरहॉक शहर से भी अधिक शक्तिशाली थी। कमांडर रॉकी, आपके भाड़े के सैनिक समूह में से कितने लोग प्रत्यक्ष युद्ध में भाग ले सकते हैं?
100।
अच्छा, ऐसा है। रॉकी के जवाब पर लिन फैंग ने सिर हिलाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि रॉकी अपने साथ 180 लोग लाया था। हालांकि स्काईशिप की वजह से कुछ लोगों को विमान चलाने का काम सौंपा गया था, इसलिए युद्ध के लिए 100 लोगों का उपलब्ध होना पहले से ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार बैकहिल गांव के सैनिकों को मिलाकर दोनों पक्षों के पास राक्षसों के खिलाफ युद्ध के लिए 300 सैनिक तैयार थे, जिनमें 200 योद्धा, 50 धनुर्धर और 50 जादूगर शामिल थे। इस तरह से गणना करने पर संयुक्त रूप से भी सेनाएं बहुत बड़ी नहीं थीं और सामान्यतः राक्षसों से लड़ने के लिए अपर्याप्त होती। हालांकि बैकहिल गांव के पास एक अनूठा भौगोलिक लाभ था और ऊंची दीवारों ने नाकाबंदी प्रदान की, जिससे उन्हें एक महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिला, जिससे युद्ध अपेक्षाकृत आसान हो गया। इसके अलावा रॉकी द्वारा लाए गए 10 स्काईशिप को भी नहीं भूलना चाहिए। ये 10 आकाशयान लड़ाई में बेहद अहम थे, खासकर जब बड़ी संख्या में राक्षसों का सामना करना पड़ रहा था। जादुई तोपों से व्यापक क्षेत्र में बमबारी राक्षसों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम कर सकती थी। स्काईशिप्स के संबंध में मेरे 2 प्रश्न हैं। जब बात स्काईशिप्स की आई तो लिलिया, जो ज्यादातर चुप थी, बोल पड़ी। उसने लिन फैंग की तरफ देखा। स्काईशिप्स असल में कहां खड़े होंगे? वे फिलहाल गांव के बाहर हैं, लेकिन जाहिर है वे वहां अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते क्योंकि वे राक्षसों के लिए मुख्य निशाना होंगे। हालांकि मुझे गांव में उन्हें खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। लिलिया का प्रश्न वास्तव में तीखा था क्योंकि रॉकी और अन्य लोग वास्तव में बैकहिल गांव में आ चुके थे और उन्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई थी, लेकिन गांव के बाहर अभी भी 10 स्काईशिप खड़े थे। चूंकि ये आकाशयान एक महत्वपूर्ण लड़ाकू बल थे, इसलिए इन्हें हमेशा बाहर खड़ा नहीं किया जा सकता था। बैकहिल गांव के ठीक बाहर एक विशाल बंजर भूमि थी जहां अगर राक्षस प्रकट होते तो आकाशयान मुख्य निशाना बन जाते। यह उसके सवाल का सामना करते हुए लिन फैंग ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने वास्तव में इस पर विचार नहीं किया था क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रॉकी इतने सारे स्काईशिप लाएगा, और स्वाभाविक रूप से उसने उनके लिए डॉकिंग स्पेस तैयार नहीं किया था। ये रहा एक आइडिया। कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद लिन फैंग आखिरकार बोला, पहाड़ पर एक खुली जगह है। जब हम स्काई सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से व्यापार करते हैं तो वे अपने स्काईशिप वहां पार्क करते हैं। ये जगह काफी बड़ी है, 10 स्काईशिप के लिए पर्याप्त, लेकिन इस व्यवस्था से हमारी मदद के लिए आने वाले स्काईशिप की गति काफी धीमी हो जाएगी। यद्यपि उन्होंने आकाशयानों के लिए एक उपयुक्त स्थान के बारे में सोचा था, लेकिन वह स्थान बैकहिल गांव से अपेक्षाकृत दूर था, जिससे आकाशयानों की लड़ाई में भागीदारी बहुत धीमी हो गई। हालांकि यह अपरिहार्य था। गांव के बाहर राक्षसों द्वारा निशाना बनाए जाने से बेहतर था कि आकाशयानों को दूर खड़ा किया जाए। दूसरा मुद्दा यह है कि स्काईशिप का मान सीमित है, वे हर लड़ाई का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए कृपया कैप्टन लिन फैंग, इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। स्काईशिप को कहां खड़ा किया जाए, इस पर विचार करने के बाद लिलिया ने दूसरा मुद्दा उठाया। हालांकि स्काईशिप एक महत्वपूर्ण लड़ाकू बल थे, लेकिन वे हर लड़ाई के लिए पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रह सकते थे क्योंकि उनका मान सीमित था। लिलिया को एहसास हो गया था कि लिन फैंग की सौहार्दता और संतुष्टि मुख्यतः इसलिए थी क्योंकि वे 10 स्काईशिप लेकर आए थे। ये समझ में आता था क्योंकि राक्षसों के खिलाफ किसी भी लड़ाई में आकाशयानों की भूमिका हमेशा शून्य जादू दस्ते की तुलना में गौण होती थी, लेकिन सामान्य सैनिकों से कहीं अधिक होती थी, इसलिए इन 10 आकाशयानों में लिन फैंग की रुचि अपेक्षित थी। लेकिन लिलिया को उसे याद दिलाना पड़ा कि इन 10 आकाशयानों को हर युद्ध में बमबारी के लिए तैनात नहीं किया जा सकता, उनका मान अंततः सीमित है और एक बार समाप्त हो जाने पर वे बेकार कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। इसलिए वे आकाशयानों पर भरोसा तो कर सकते थे, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रह सकते थे। मैं समझता हूँ, लिलिया की चेतावनी के जवाब में लिन फैंग ने सीधे कहा, इस समय स्काईशिप हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, मैं उनका अंधाधुंध उपयोग नहीं करूंगा, इस बात पर निश्चिंत रहें। इसके अलावा अगर युद्ध में स्काईशिप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बैकहिल विलेज जिम्मेदारी ले सकता है और मुआवजा दे सकता है, मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि कमांडर रॉकी कंजूस नहीं होंगे। लिलिया की ओर देखते हुए लिन फैंग ने रॉकी को संबोधित करते हुए दावा किया कि बैकहिल गांव युद्ध में स्काईशिप को हुए किसी भी नुकसान को सहन कर सकता है और उसकी भरपाई कर सकता है, लेकिन रॉकी को अपने स्काईशिप के साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए और महत्वपूर्ण होने पर उन्हें प्रतिबद्ध करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह कोई समस्या नहीं है। रॉकी स्वाभाविक रूप से इस अनुरोध पर सहमत हो गया। इसके साथ ही सभी को एक दूसरे की स्थिति के बारे में सामान्य समझ हो गई और फिर उन्होंने बचाव के विशिष्ट विवरणों पर चर्चा शुरू कर दी। कमांडर रॉकी, मेरा सुझाव है कि हम बारी बारी से बचाव करें। जब रक्षा की बारीकियों की बात आई तो लिन फेंग ने सबसे पहले सुझाव दिया। मेरा सुझाव है कि हमारी सेनाएं बारी बारी से बैकहिल गांव की रक्षा करें। मैं एक दिन सैनिकों का नेतृत्व करूंगा, फिर अगले दिन आप भाड़े के सैनिकों के समूह का नेतृत्व करेंगे। इस तरह हम दोनों पक्षों पर दबाव कम कर सकते हैं। बेशक जब एक पक्ष बचाव कर रहा हो तो दूसरे को भी सतर्क रहना चाहिए ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मदद के लिए तैयार रहें। अगर हमलावर राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा हो तो हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि यह स्वीकार्य है?